क्या, जो गुरु के वचनों को सत करके मानेगा वो निकाल के एवं भ्रम कर देगा। तो सत्य चीज कहते चरणों में बैठने की सवा है, इस मन के काबू करने का कोई उपाय नहीं। और उसके पास कौन सी दवा है, नाम कहते छोड़ पिंड चालू पर दे।
इस मन को संयम को नाए, ऋण सतगुर की शरणाए, सतगुर मिलिए उलटी भई घृणा के छूना जाए।
कहते किसी सत्स्वरूप हस्ती से मिलने से क्या होता है, अब हमारी इंद्रिय फैल रही है ना बाहर, हमारा मन इंद्रियों के अधीन है, हमारी आत्मा मन के अधीन है, तो ये बाहर फैलाव में जा रही है। जो चीज फैलाव में जा रही है अंतर की हालत तो कैसे जान सकेगी। किसी अनुभवी पुरुष के पास जाओगे वो आपको कौन सा उपाय देगा, याद अपराविद्या की
ऐसे ही रसम रिवाज जितने हैं कवानीन समाजों के आपको अपने, वो अपनी आत्मा को अनुभव और प्रभु के अनुभव करने के लिए मददगार हैं, जमीन बनाते हैं। पहला कदम है जो हर एक इंसान को उठाना पड़ता है। आत्मा चेतन है, ये जुजो है और मालिक कहो परमात्मा कहो कुल है, जिसका जुजो है उसका कुल भी है। हर एक जुज के अंदर ये कुदरती खाक मौजूद रहती है कि वो कुल से मिले। तो ये तलाश कहो खोज कहो हर एक इंसान के अंदर दबी हुई मौजूद है, वो उसको पाने का यत्न कर रहा है, हमेशा के सुख को हासिल करने का यत्न कर रहा है, मगर उसको ये पता नहीं कि असल सुख है कहां। हमारी आत्मा मन के अधीन है, इंद्रिय भोगों के अधीन, इंद्रियों को भोग गो रूपी घोड़े खेचे फिरते। तो इसमें ये दुखी इसका बढ़ रहा है, भोगों से रोग और रोग से शोक पैदा होता है, भोगों से रोग, रोग से शोक, इंसान सारा जहां भी दुखी जितने भी हैं। तो जिस अंतर ये मेमा ये कहो ये तलाश कहो या खोज कहो कुदरती तौर से मौजूद है, वो कुछ न कुछ करता रहता है सुखी होने की खातिर। वो इस सुख को पहले बाहर मुखी चीजों में तलाश करता है, खाने पीने में, इंद्रियों के भोगों में, और ये कुछ करते हुए भी वो देखता है कि मैं सुखी नहीं, फिर भी दुखी। फिर इसके बाद इंटेलेक्चुअल बुद्धि के विचारों नई नई इन्वेंशन नए नए हालात के पैदा करने में समझते शायद उनमें सुख है, उनमें भी आखिर देखते हैं कि सुख नहीं, आखिर हार कर वो अपने आप की तरफ मतवजह होता। ऋषि मुनि महात्मा दुनिया में आए, जब से दुनिया बनी है यही खोज जारी है, मिस्ट्री ऑफ लाइफ क्या है, हम कौन है, इसको जानना असल सुख का कारण। हम अपने आप को भूल चुके हैं, हमारी आत्मा मन के अधीन है, मन आगे इंद्रों के अधीन है, इंद्रिय के घाट पर हम जिस्म और दुनिया का रूप बने बैठे हैं, जगत का रूप बन गए हैं, इतने आइडेंटिफाई हो गए जिस्म के साथ कि हम अब तमीज नहीं कर सकते कि हम ये जिस्म हैं या इस जिस्म के चलाने वाले हैं, इन ड्वेलर ऑफ ये हाउसेज हैं या के ड्वेलिंग हाउसेज देन शेल्टर, हम इस मकान के मकीन हैं या मकान हैं। तो ऋषि मुनियों ने ये देखा कि वही इसमें तो सुख है नहीं। बाहरी पशु सब्जेक्टिव पशु उसमें सुख परमानेंट सुख नहीं है, टेम्परेरी सुख कहीं कहीं नजर आता है हमको, पर वो लास्टिंग नहीं है। वो सुख भी जो हमको बाहर टेम्परेरी तौर पर नजर आता है वो भी हमारा अपना ही सुख है जो उसमें हम प्रतीत कर रहे हैं। जैसे कुत्ता हो वो हड्डी को खा रहा हो तो हड्डी को खाते हैं उसका खून अपना बहता है, हड्डी में तो कोई रस नहीं, मगर वो उसमें मस्त है कि हड्डी में ही रस है। ऐसे ही हमको बाहर इंद्रियों के भोगों में रस प्रतीत होता है, मगर वो रस उन भोगों में नहीं, वो रस हमारी यक्षिणी में है। हमारी अटेंशन के वहां पर राइवेट इकट्ठा एकत्र हो जाने में, अपना खून खुद पीते हैं कुत्ते की तरह, जैसे वो हड्डी खाता है। इस गलती में सारी दुनिया जा रही है। परमात्मा निजानंद का समुद्र है, हमारी आत्मा उसकी अंश है, ये भी आनंद का एक कतरा आनंदमय है, मगर ये अपने आनंद को भूल चुका है, ये दूसरों को पर रिफ्लेक्ट करके उसका रस ले रहा है। अगर ये सब तरफ से हट जाए तो ये आनंद मुझे से बन जाए, और सेल्फ को जान ले अपने आप को तो ओवर सेल्फ जो महा आनंद का समुद्र था से माता उसमें वासिल हो जाए। इसमें बड़ी भारी एक मस्ती है, खुमार है, नशा है, शुभ सुबह सब कहते हैं कि मेरे में वो नशा और वो खुद मस्ती है, निजानंद की धारे बह रही है कि अगर मैं इस जिस्म को छोड़ जाऊं, इस जिस्म की खाद बनाकर कहीं जमीन में डाल दी जाए, उस जमीन से जो कनक उगे उस कनक की रोटी जिस तनूर में पके उससे आनंद के शोले निकले। फिर ये कहा कि इस रोटी के खाने वाले का जिक्र नहीं किया, कहते इस रोटी के परोसने वाला मस्त हो जाए। बताओ कितना भारी आनंद है। मनुष्य आनंद का हमें पता नहीं, हमें जो इंदु के भोगों पर थोड़ा बहुत आनंद नजर आता हम समझते यही है। अगर फरदौस बरुए नवीनस हमीनस तो हमीनस तो हमीनस, हम इसी में भूल में जा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने आप की तरह मतोजे मुतलाशियों को किया कि भाई तुम हमेशा के सुख को पाना चाहते हो तो अपनी तरफ देखो, कुछ दिन अपने फकीर आप बनो दारिश को बादशाह कहता। जब अपनी तरफ नजर आती है तो देखते हैं तुम बड़ी बड़ी खामियां हैं, बड़ी शॉर्ट कमिंग्स हैं, फुल ऑफ क्या कहना चाहिए फेलियर रहा है ये इंसान, इसके अंदर काम के वेग चल रहे हैं, क्रोध के वेग चल रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष के वेग चल रहे हैं, निंदा चुगली धड़ेबंदी में जा रहे हैं, दूसरों का बुरा चितून कर करके दूसरों के अवगुणों का ये भंडार बना पड़ा है, अपने अवगुणों को दिन दिन बढ़ा रहे हैं। एज यू थिंक सो यू बिकम, अगर किसी गंदगी पर बट्टा मारोगे तो उससे क्या होगा, वो गंदगी छींटे तुम्ही पर पड़ेगी ना। हम सीआईडी की सिपाही की तरह हमेशा दूसरों पर नजर रहते हैं, इसमें क्या होगा ना। अनपेड अप्रेंटिसिज ऑफ द सीआईडी ऑफ गॉड काम करते रहते हैं, हर वक्त दूसरों का बुरा चित्र बुराई देखने के यत्न करते हैं। अरे भाई दूसरों की तरफ देखना है तो उसके गुणों की तरफ देखो, गुणों का असर आएगा ना, अवगुणों का विचार करोगे अवगुण आएंगे, गुणों का करोगे गुण आएंगे। तो जिनको अपने आप की तरफ नजर आती है पहले उनको अपने आप में बड़ी खामी है, शॉर्ट कमिंग्स महसूस होती है, इसमें ख्याल बुरा चितून आ रहा, इस पर मैल चढ़ी पड़ी है। महात्मा कहते हैं कि जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होया स्याह, जन्म जन्म की इस पर मैल लगी पड़ी है, ये काला त्याग हुआ पड़ा है मन। और आगे हर रोज इंद्रों के घास इस पर और आलाइश और मैले जम रही, मुझे महसूस करता। जब परमात्मा की तरफ चलता है ना, अपने आप की तरफ नजर आती है, मैं तो बड़ा बहुत मैं इसी लायक नहीं हूं। जिसको ये एहसास होना लगे, अपने हृदय की गहराइयों में जाने लगे, उसको छोटी छोटी से हर इच्छा कमी खामी महसूस होने लगती है। जिसको महसूस होने लग गई, समझो आप उसके निकलने का वक्त आ गया। कुत्ता बैठता है, वो भी दुम से जमीन को सफा करके बैठता, वो मैली जगह नहीं बैठना चाहता। मामूली से अवसर ले आना हो तो भी उसके लिए हम कितनी सफाइयां करते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो शांशाओं का शांशा परमात्मा हमारे घर में प्रगट हो जाए। वो कैसे हो सकते हैं? नाले हृदय में कभी आएगा? क्राइस्ट ने कहा, ब्लेसिड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। यीशु मसीह साहब ने कहा कि जिनके हृदय पितर हैं वो मुबारक है, क्योंकि केवल ऐसे पितर हृदय ही उस प्रभु को देख सकेंगे, बाकी नहीं। तो हृदय की पितरता कहो, आलाइशों से पाक होना कहो, जन्म जन्म की जो मालिश में लगी हुई है उसको, और हर रोज जो दिनों दिन इसमें बढ़ रही है उसको काटने में ये परमार्थ की कामयाबी कर रहा है। एक तालाब है, उस पर काई जमी है सब्ज रंग की, मालूम होता पानी कोई नहीं, थोड़ी सी छोटी है थोड़ा पानी देता फिर काई जम जाती है। यही हाल हमारा है। कभी सत्संग किसी कभी विचार से थोड़ी बहुत या हमेशा आके महसूस होने लगती है, किसी की थोड़ी झलक आने लगती है, फिर अनजाली से फिर बैठी होगी। तो उसके बेस्ट सबसे अच्छा इलाज क्या है कि थोड़ी थोड़ी काई रोज बाद फेंकती चले जाओ, ताकि काई निकल जाए फिर पानी साफ। तो ये एहसास होने लगा है, जिसके अंदर ये एहसास आने लग गया। गुरबानी कहती है, जो अपने को जाने नीचा सो गिनिए सबसे ऊंचा। जो अपने आप को मैं एहसास करने लगे, इसको महसूस करने लगता है कि मैं सबसे लोएस्ट हूं, समझो उसको वो ऊंचा कुछ जा रहा। कबीर साहब ने क्या, कबीरा सबसे हम बोले, हम तज फलो सब को हो, जिस ऐसा कर जाने हम बीत हमारा सब। जिसको ये एहसास हो गया तो हो गई बात कि मैं स्वाकई ही सबसे बुरा हूं। जब अपने आप की तरफ नजर मारो यही महसूस होगा हमको दूसरों की आंख। यीशु मसीह साहब कहते जो दूसरे की आंख का मोल बड़ा भारी नजर आता, अपने आंख का शातीर पता नहीं। जिसने अपने आप की गहराइयों में डिप नहीं किया, उन शार्ट कमीज को जिसमें बस रही है उनको निकाला नहीं, उसके हृदय कैसे साफ हो सकता? जब तक हृदय साफ न हो काम नहीं बन सकते। परमात्मा कहा, नानक नाव खुदाए का दिल अच्छे मुखले, दिल को साफ करके लो भाई जबान से तब न हो। अगर हृदय साफ नहीं, मुंह में राम राम बगल में छुरी, लोगों के गले काटता है, खून निचोड़ता है, हक मारता है बेवाओं के यतीमों के, या चालाकी से कहो, पॉलिसी से कहो, बड़ी होशियारी से कहो, दूसरों को पता भी नहीं लगता लोगों को रुपया हर नहीं आता, भाई ऐसी मैले चढ़ी कैसे निकल सकती। हम लोगों को आम एहसास नहीं, कोई भी कहता हूं मैं तो बिल्कुल ठीक था, मेरे में तो कोई कमजोरी नहीं। अगर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से कुछ दिन काम लें पड़ा माइनोरिटी, तो कसौटी सत्संग की रहे, महात्माओं की बानी रहे, उन पर परखता रहे, तो हर एक दिन में शायद सैकड़ों शायद कमी नजर आएगी कमजोरी। जिसको अपनी आप की तरफ नजर आने लग गई, उसके निकलने का सामान हो जाएगा। जो भी ये सभी तरह गंदगी में बैठा हूं वो कब तक बैठा रहेगा, वो निकल नहीं सीता। तो इस मल के धोने के लिए फिर इंसान उपाय करता कुछ, इसी तरह ये मल धो जाए। अब कपड़े मैले हो तब धोबी की दुकान पर जाते हैं ना, और किसी की दुकान पर नहीं जाते, जितने धोबी उनके दर दर पर जाएंगे भाई हमें कपड़ा धो लो। अब ये तो हुई कपड़े की मैल, तन की मैल भी पानी से धोई जा सकती, अब मन की मैल कैसे जाए सवाल तो ये। फिर वो मुख्तलिफ महात्माओं के पास धर्म बंडो भर जाता, बड़े घाटों पर फिरता जहां ये मन की मल धोई जाए, मगर जहां कहीं भी जाता कहीं कहता भाई ऐसा करो सिर्फ जबानी जब करते रहो। इंद्र वैसे ही काम कर रहे हैं, बार ख्याल ले हुए हैं, जहां जाते हो कहते भाई हड्डियों की क्रियाएं कर लो, कोई कहता रस्म रिवाज पूजा पाठ तीर्थ यात्रा ये वो पुण्य दान करते रहो, ठीक है ये एलिमेंट्री स्टेप्स है, मगर इससे मन की मैल नहीं जाएगी। सवाल तो ये मन की मैल कैसे जाए, बड़े बड़े घाटों पर इंसान फिरता है मगर कोई ऐसा समर्थ पुरुष नहीं मिलता धोबी जो इसकी मन की मल धोने का उपाय दे बताए। जितने इंद्रों के घाट के साधन है थोड़ी देर के लिए तो इसको टिकाव मिलता है मगर मन की मैल नहीं, इसमें और पड़ती रहती है ना, इंद्रियों की घाटी मैलें आती है ना मानो, और इंद्रिय दमन हो, सवाल तो इंद्रियों के दमन करने का, जब कहीं इंद्रिय दमन नहीं होती काम नहीं बन, फिर मन खड़ा हो, फिर बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार होता है। ये उपनिषद कह रहे हैं। अब ये मल कैसी जाए, बड़े बड़े महात्माओं के अड्डों पर जाता है, ये कहते हैं धोबियों के घाटों पर जाता है, मगर कोई ऐसा सुजान धोबी नहीं मिलता है जो इस मन की मल को धोते। दिन दिन काम क्रोध के वेग, लव लालच की हवस सुख को फैला रहे हैं, दिनों दिन और मैलें उस पर चढ़ रही है। विचार से थोड़ी देर के लिए ये खड़ा होता मगर फिर गिर जाता, यहां इंसान हार जाता। जब इंसान हार जाए ना तब काम बनता। एक बच्चा था, एक कमरे में खड़ा था तो उठना चाहता था, पांव फिसल गया गिर गया, फिर दीवार को पकड़कर उठना चाहे हाथ फिसल गया फिर गिर गया, फिर किसी कुर्सी को पकड़कर उठना चाहता था कुर्सी उलट गई फिर मुंह के बल गिर गया, हार गया। हार कर दिल से आवाज निकली हाय माँ, दर्द भरी आवाज थी, माता रसोई में बैठी काम कर रही थी, दूध रखा हुआ था आग पर वो बाले खा रहा था, हाय माँ की आवाज सुनकर माता से रहा था कि हम भाग दौड़ी, दूध की छोड़ दिया पैसे, जाकर बच्चे को उठाया सीने से लगाया रसोई में ले आई, देखा तो दूध सब गिर गया था। बच्चा कहने लगा माता मैं तुम्हें बड़ा प्यारा हूं, तुमने दूध की परवाह नहीं की, मेरी एक बार हाय माँ कहने से तू भागी दौड़ी चली आई, यहां बच्चा तू मुझे बड़ा प्यारा। खैर बच्चे के दिल में ये चित्राई सूझी कि चलो अब माता को बुलाना क्या मुश्किल है, हाय माँ कहेंगे माता आ जाएगी। तो चार दिन के बाद उनका दीवार के साथ खड़ा है चुपचाप, कोई गिरा नहीं कुछ नहीं, कहता हाय माँ हाय माँ हाय माँ हाय माँ करता रहा, आधा घंटा हाय माँ करता रहा, माँ ना आई माता ना आई, समझा कि आज माता ने जरूर बहुत आला चीज बनाई होगी इसलिए नहीं आई। रिटते रिटते रींगते रींगते पहुंचा माता के पास, उसके कंधे को पकड़कर खड़ा हो गया कि माता हाँ बच्चा आज मैं हाय माँ कितनी बार करता रहा, आधा घंटा करता रहा, तू आई नहीं क्या करूं, उस दिन मैंने एक बार हाय माँ कहा था तू भागी दौड़ी चली आई आज क्यों नहीं आई, कहते बच्चा आज तेरी आवाज में वो दर्द नहीं था। तो जिस इंसान के अंदर खोज और तलाश की तड़प जबरदस्त जागती है वो बेचारा उपाय करता है, एक जगह जाता है दूसरी जगह जाता है तीसरी जगह जाता है, बड़े घाटों पर फिरता, फिर फिरकर जब इसका कोई उपाय नहीं मिलता तो पुकारता है हे माता हे माँ हे मालिक हे प्रभु दया कर, ये तरस रहा है, तड़प रहा है, इस मैल के धोने के लिए कोई उपाय बन जाए। मगर जितने साधन मिले सब मैलों को न धो सके, कोई तन की मैल को धो गए समझे, वो तो सामान होता रहा, मगर मन की मल धोने का कोई उपाय नहीं। जब दिली पुकार निकली तो आपको पता है हाथी की चिंगार उस प्रभु को पीछे पहुंचती है, कीड़ी की आहट की आवाज पहले जाती है, दिली शोर तड़प से भरी आवाज जो है दुख भरी वो घट में बैठा सुन रहा है। जिसकी सच्ची तड़प हो बेअख्तियार मालिक फिर सामान करता है उसके दिलाने का, और वो क्या है किसी मिले हुए को मिला देता, डायरेक्ट करता है जाओ भाई नहीं। फिर वो क्या करता है या खुद पहुंचता है या उसको अपने साथ मिलाने का कोई बहाना बना देता है। मैंने हजूर के वक्त देखे कई ऐसे इवेंट अब भी देख रहे हैं। एक बार अमृतसर हजूर बैठे थे तो शो का वक्त था, मैं भी बैठा था, इतने एक से एक भाई आ गए तो मैंने कहा भाई साहब आप कहां से आए, कहते यहीं से आए, कैसे आए, कहते आज मुझे बुलाने गए थे कि तुम वहां आ जाओ मैं फलाने मुकाम पर हूं, क्योंकि जो सम्राट पोषण में कई ताकतें काम करती है, डायरेक्शन होती रहती है, तो उसका सामान बन जाता। फिर वो आगे उसके मन के धोने का सामान करता, उसको उपदेश करता ये मन की मल कैसे जा सकती है। ये सवाल जो कुछ आपके सामने रखा गया है ये किसी खास समाज कौम मजहब मुल्क से ताल्लुक नहीं रखता, ये एज ए मैन प्रॉब्लम है, हर एक मुतलाशी को पेश आते हैं। जो भी उसे जानना चाहता है पहले वो अपने आप को जान, बाहर की जो शार्ट कमिंग्स है उसको दूर करें, नेक पाक और सदाचारी बने, और उसके बाद बनने पर सेल्फ एनालिसिस करें। जो इन्हों के भोगों में लंपट है, जीवन पाक पितर नहीं वो, इससे आजाद कैसे हो सकता, तो पहले देखपाल जीवन पहला कदम है, इसको बनाकर फिर किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में बैठेगा, इसको सेल्फ एनालिसिस खाएगा, अरे बे तू आत्मा है, मन इंद्रियों के अधीन होकर जिस्म का रूप बना बैठा है, इसको छोड़ ऊपर आ ट्रांसेंड कर। ये ट्रांसेंशन कैसे हो सकती है, इसका उपदेश मन की मैले कैसे दूर हो सकती हैं, इसका जिक्र उनके उपदेशों में मिलता है। इस वक्त आपके सामने दो शब्द छोटे छोटे रखे जाएंगे, एक कबीर साहब का और एक गुरु अमरदास जी साहब का, गौर से सुनिए वो क्या कहते हैं।
सोच समझ अभिमानी चादर भई है पुरानी।
फरमाते हैं कि ऐ अभिमानी पुरुष तू किस रोम में जा रहा है, होश में आ रहा तू कर क्या रहा, तेरी आत्मा की चंदरिया कहो चुनरिया कहो ये जिस्म कहो ये तो मैली हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है और मैली हो चुकी है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है जिस्म बूढ़ा ही होता है ना, पुराना ही होता है। अरे भाई तू किस अभिमान है, ये तो जिस्म छोड़ने का वक्त आ गया, आप तो नजदीक आ रहा है, हर दिन हर घंटा हर मिनट आपको उस ग्रेट फाइनल चेंज जिसको लफ्ज माउथ से अदा किया जाता है नजदीक आ रहा है। ये जिस मशीनरी है इस्तेमाल होकर खराब हो रही है, वेयर आउट हो रही है। अरे आया अभिमानी पुरुष तू किस नशे में जा रहा है, होश में आ, हु यू आर व्हाट यू आर, तुम कौन हो, तुम्हारा संबंध इस जिस्म से क्या है, तुम्हारा संबंध दुनिया से क्या है और तुम्हारा संबंध उस परमात्मा से क्या है, इस इन डिवाइन लिंक को जन और उसके मुताबिक जीवन बना। जागता पुरुष उन लोगों को उपदेश दे रहा है
जो इस अभिमान में जा रहे हैं वो कहते हैं मैं बड़ा तनुमंद हूँ, बहादुर हूँ, ताकतवर हूँ, जिस्मानी बाहुबल रखता हूँ। अरे भाई ये बाहुबल की क्या कीमत है? नेपोलियन बोनापार्ट थे तो उसके नाम से यूरोप थराता था किसी जमाने में। जब वो उसका अंत समय आता है तो कहते हैं उसको खून के एक दस्त आया था, मोशन आया, इतना लाचार हो गया कि आंख नहीं खोल सकता। तो कहने लगा मैं वो नेपोलियन हूं जिससे नाम सुनकर यूरोप कांपता था, आज अगर मैं अपनी आंख खोलना चाहता हूं तो लाचार हूं, खोल नहीं सकता। तो बाहुबल के क्या इस बार है भाई, जो बड़े बड़े अकलमंद हैं, बुद्धि का बल रखने वाले हैं, वो भी एक सनस्ट्रोक हो जाए, एक अटैक हो जाए, सब पढ़ा लिखा भूल जाता। इसके क्या इस बार है, इंसान पागल हो जाता, पढ़ा लिखा भूल जाता, होश ठिकाने नहीं है। तो इसका भी कोई एक बात, मगर ये जिस्म के बल बाहुबल में तनुमंद मेरे जैसा कौन है, मैं जोबनवंत हूं, मैं बहादुर हूं, मेरे सामने कौन खड़ा रह सकता है? अरे भाई ये जिस्म में ये जो कुछ है या बुद्धि का बल जो आप में है, बड़े आलम फाजिल हो, ये किसके आधार पर चल रहा है? आत्मा के आधार पर, और तुम आत्मा हो, उसके मुतल्लिक, जिसके बल पर ये चल रहे हैं उसके मुतल्लिक तुम कुछ नहीं जान रहे, और जिसके आधार पर ये जिस्म और बुद्धि दोनों चल रहे हैं इसके मुतल्लिक तुमने बड़ी तरक्की कर ली, ग्रहों की हाउस होल्ड लिहाज से, सामाजिक लिहाज से, पॉलिटिकल लिहाज से, मगर अपने आप के मुतल्लिक जिसके आज से ये सब कुछ चल रहा है उसके मुतल्लिक तो यू नो लिटिल आर नथिंग, तुम थोड़ा या बिल्कुल कुछ नहीं जानते, ना के बराबर जानते हो। क्या जानते हम? किसी महात्मा की वाणी थोड़ी पढ़ ली बस, या कहीं धर्म स्थान में जाकर मथा टेका, हमारे आम लोगों की बस यही कुछ है। और ये भी किसी को अगर जाकर पूछो ना भाई तुम क्यों पाठ रोध करते हो, क्यों धर्म स्थान में जाते, इसलिए हमारे बच्चे राजी रहे, मेरी सेहत अच्छी रहे, मेरी रोजी बनी रहे, दुनिया के लिए प्रभु को याद भी किया तो दुनिया के खातिर, अगर दुनिया न मिले तो प्रभु का 100-100 गाली दुनिया के लोग निकालते, तो क्या छुपा हुआ ना? मजबूत है, उसको एक बार कहा गया कि खुदा मजनू खुदा तुमको मिलना चाहता, तो कहने लगा अगर वो मिलना चाहता है तो लैला की शक्ल बनकर आए, खुदा को भी वो मिलना नहीं चाहता, अगर लैला की सूरत में आए तो मिलना चाहता है। हम भी को खुदा को इसीलिए याद कर रहे हैं कि अगर दुनिया हमारी बनी रहे, इसीलिए ज्यादातर कितने लोग हैं जो सचमुच उस मालक के लिए तड़प रहे हैं, समझे? बहुत कम लोग मिलेंगे, कोट लाखन में कोई है नहीं, कोटन में कोई एक, तेरा सेवक इकद्दा हो सगले बिहारी, सभी बुलानो पेट के धंधा, ये दुनिया की हालत है जिसमें ये दुनिया जा रही है। कहते हैं अभिमानी पुरुष तू किस नशे में जा रहा है, ये 5-6 फुट का पुतला जो तू लिए फिरता है ये हमेशा रहने वाला नहीं, एनी मोमेंट किसी वक्त ये कट ऑफ हो सकता, लिटिल एक्सीडेंट में मौत हो सकती है, पांव फिसल जाए तो मर जाता, और कोई तारीख मुकर्रर नहीं इसके खत्म होने की। तू अभिमान किस बात पर कर रहा, तू सोच समझ अभिमानी, ये चादर बही है पुरानी, दिन दिन तो ये वेल आउट हो रही है ना, आखिर मशीन टूटी जाएगी, कब तक चलेगी इसकी लाइफ, थोड़ी मोटे खास फिश लाइफ ही होती है ना, जितना इसको संभाल कर रखोगे काम बनेगा। पर हम क्या कर रहे हैं, जिस्म की पुष्टि ब्रह्मचर्य से है, गौर से सुनिए, इस पिंड की पुष्टि ब्रह्मचर्य के कायम करने से, ब्रह्मचर्य की हमने रक्षा नहीं की, कदम कदम पर फेलियर था, नतीजा क्या? हिसाबदानों ने हिसाब लगाया है कि 40 कतरे घी का एक खून का कतरा बनता, 40 قطرے خون کے ایک سیمن کا قطرہ بنتا ہے. بتاؤ کتنی ویلیوبل چیز ہے اور ہم کس بے دردی سے اس کو گوا رہے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ شادی ہوئی نہیں, بھوگوں کی مشین سمجھ رکھا ہے اس کو. نتیجہ کیا؟ 200 لگ کبڑا ہے, کہیں درد ہے, کہیں کچھ ہے, دوائی ہاتھ میں. آپ بھی بیمار, استری بھی بیمار, بچے بھی بیمار, ہائے ہائے کر رہے ہیں. گزارا ہوتا نہیں, آگے ہی اور ادوگتی میں چلے. اگر برہمچرد کی رکشا ہو, یوں نیک پاک ہو, سداچاری ہو, انسان رشک کو بوڑھی عمر تک رشک اس رہ سکتا ہے, وہ کام کر سکتا ہے بوڑھی عمر میں جو جوانوں جوانی کی عمر میں کر سکتا ہے. تو اس لو میں انسان گیا ہوا, انسان کتنے دن کا کھیل رہ جاتا ہے, کچھ نہیں. آخر پوچھ بھی رہے, آخر جسم کا کھیل تو آتما سے ہے نا. چچر وسے سہیلی چچر ساتھی نال, جہاں ساتھی اٹھی چلے تاں تھا نا خاکو رہا. جاتے ہی جسم کا ساتھی اس کے ساتھ بس رہا ہے, تب تک اس جسم کی شوبھا ہے. جب اس جسم کا ساتھی ان ڈویلر آف دی ہاؤس, مکان کا مکین, ہماری آتما, ہم اس سے جدا ہوتے ہیں, اس کو کون پوچھتا ہے؟ آدھ گھڑی کو انہیں راکت کرتے دیت میں کہا, کاڈو کاڈو ہوئی بھائی, جلدی کرو, دیر ہو رہی, ہم نے اور کام بھی کرنے. یہ نہیں پتا کہ ارے بھائی اس کا انسم آیا. یہ بڑا ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے تمہارے سامنے, ارے بھائی تو نے بھی جسم کو چھوڑنا. کیا ہم اس جسم کی چھوڑنے کی سائنس کو عمل میں لا چکے ہیں, اس کے ماہر بن چکے ہیں؟ پھر تو موت کا کوئی خوف نہیں. اگر نہیں جانا تو لاہور کا واقعہ ہے. ایک بار ساتھ ایک گاؤں تھا, اس میں ایک بھائی کا لڑکا جوان گزر گیا. اس کے شمشان بھول میں لے گئے, بہت ساری جینٹری آئی تھی. لڑکے کو مردے کو نیچے ڈال دیا جاتا ہے نا تھوڑی دیر کے لیے, پھر چیخا تیار کر کے شمشان, پھر اس کو وہاں پر اوپر لٹایا جاتا ہے اور جلایا جاتا ہے. تو مجھے کہنے لگے, میں بھی وہاں تھا, کہ تم اس وقت کچھ اپدیش دیجیے گا. میں نے کہا بھائی اپدیش کا مضمون آپ کے سامنے پڑا, یہ تمہارے جیسا جسم رکھتا تھا, اب اس کے چلانے والا نکل چکا ہے اور تم میں ہے. ایک دن تمہارا بھی آئے گا, اس جسم سے تم نکل جاؤ گے, تمہارے جسم کا یہی اشر ہوگا. 10 2 8 اینڈ دین ٹو 10 ریٹرن. تم مٹی ہو, تمہاری جسم مٹی ہے, مٹی میں ملا دیے جاؤ گے. کیا تم اس تبدیلی کے لیے تیار ہو؟ آر یو پریپیئر فار دس چینج؟ اگر ہو تب تو ٹھیک, نہیں ہو اس کے لیے حل کرو. یہ کون سی چیز ہے جو نکل جا رہی؟ تو کسی ابھیمان میں انسان جا رہا ہے. کبیر صاحب کہہ رہے ہیں, ارے بھائی آیا پوش, تو کس ابھیمانی پوش بنا پڑا ہے؟ کس ابھیمان میں جا رہا ہے؟ آخر یہ سارے نشے ختم ہو جانے جسم کے ساتھ ہیں. جب تیری آتما سے جدا ہو گئی, کیا رہ جائے گا؟ پیدا ہوتے ہوئے جسم سب سے پہلی چیز ہے جو ہمارے ساتھ آتی ہے, پہلا ساتھی, جاتی ہے ہمارے ساتھ نہیں جاتا. تو پھر اس کے سبب سے جتنے اور تعلقات بنے ہیں, بال بچے, روپیہ پیسہ, جائیدادیں, وہ ہمارے ساتھ کیسے جائیں گے؟ اسی کو صحیح معنوں میں دیکھنا فیکٹ یہی ہے. مگر ہم نشے میں جا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں کیا ہے. کوئی علم کے نشے میں جا رہا ہے, کوئی حکومت کے نشے میں چور ہے, کوئی روپے کے نشے میں غلطان ہے. اس کو آپ دوسروں کو, دوسرے بھی انسان نظر آتے, مگر اپنے آپ کی طرف تو بالکل توجہ جاتی ہے. ہوش کب آتی ہے؟ کہے کبیر کہیں نہ جاگا جب یم کا نن موڑ بھلا, اس وقت ہوش آتی ہے, جسم سے روح نکلنے لگتی ہے. گھبراتا, گڑگڑاتا, نکلنا آیا نہیں, کتنا پنچنگ دکھ. شریمد بھاگوت میں ذکر آیا ہے کہ انسان کو انتر, جب آتما روح جسم سے جدا ہوتی ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنا 1000 بچھو اکٹھا ڈنگ مارے. ایک بچھو لڑ جائے
पीछे कड़वाल पर कितने दुखदायी होता, 1000 कट्ठा लग जाए तो आपने देखे हम कोई किस्म क्या होता है, गिरता पड़ता है, टांगे मारता है, बाजू मारता है, कभी मुंह टेढ़ा होता है, कभी सीधा होता है। अगर यही भी ड्रॉल की साइंस पहले सीख जाए मौत क्या हो। कुरान शरीफ में लिखा है कि रूह का जिस्म से जुदा होते वक्त इतनी तकलीफ होती है जितने पखाने के रस्ते कांटों की झाड़ी डालकर मुंह के रस्ते खाती है। अनुवाद दिया है तो गुरबानी कहती है जिंद ने वाणी कदी हड्डा कुकड़ का इफेक्ट है जो हमारे सामने। मर गया बेमान नशे में जा रहे हैं, अरे भाई उस दिन का भी क्या उपाय तुमने किया है, जब तुमको जिस्म को छोड़ना पड़ेगा, क्या तुम जिस्म को छोड़ना सीख गए? सवाल पे मिस्ट्री ऑफ लाइफ को हल कर गए, कर लिया तो तुम मुबारक हो, नहीं तो जन्म बर्बाद करे। पैदा होते ही तो रोते ही थे, जीते भी रोते थे, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस नहीं किया, एंगल ऑफ विजन बदला नहीं। हम जिस्म के एंगल से सारी दुनिया को देख रहे हैं। अगर हम आत्मा सेल्फ एनालिसिस करके आत्मानुभव कर लेते तो आत्मा की नजर से दुनिया को देखते, दुनिया किसी और रंग में नजर आती, सही मानों में नजर आने लगे। जिस्म बदल रहा है, जगत भी बदल रहा है, दोनों एक ही रफ्तार से मैटर बदल रहा है। हम जिस्म के सवार हैं क्योंकि दोनों चीजें एक ही रफ्तार से बने, इसलिए दोनों हमको खड़ी मारती है। अगर हम पिंड से बाहर निकलना सीख जाएं, दोनों चीजें बदलती महसूस होंगी। और उन महात्माओं के कलाम जो हमने सुने हैं, ये जग छुए का थावलार, ये जिंदगी चंद रोजा है, जैसे आओ शुभ उपस्थिति है नहीं रहती सूर्य चढ़ने पर, ऐसे ऐसे कलामों को हम समझ सकेंगे उनका मतलब क्या। हम कहते नहीं, जगत सत्य है, हम भी सत्य हैं, मौत क्या है, कईयों को कहो ना मरना है भाई, कहा क्या मौत आई मर जाएंगे, अरे भाई कैसे मरेगो, सवाल तो यह है। गुरु अमरदास जी साहब कहते क्या जाना क्यों मरेंगे, कैसा मरना हो। आगे फरमाते जे तू मनो न विसरे तो सहला मन, कि उस प्रभु की याद रहे, अपने आप की होश रहे। इस मिस्ट्री को हल कर दिया जिंदगी में जिसने, उसकी मौत आसान है। कबीर साहब कहते जिस मरने थे जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही थे पाइये पूर्ण परमानंद। जिस मरने से जग त्रास रहा, डर रहा है, भयभीत हो रहा, कहते उसका नाम सुनकर मुझे खुशी की हद नहीं रहती। क्यों? क्योंकि जिस्म को छोड़कर इंसान परमात्मा में हमेशा के लिए मिल रहता, जो उसकी आत्मा इस मनुष्य जीवन में परमात्मा को पा गई जीते जी, मरकर वो कहां जाएगा, परमात्मा ही जाएगा, हमेशा के लिए एक होना है। तो कबीर साहब कहते हैं अरे भाई तू किसी अब ऐब हमारी पोष, तू किस जोम में नशे में जा रहा है। तेरा ये जो चोला तू लिए फिरता है ये पुराना हो रहा है, वेयर आउट हो रहा है, ये एक दिन अब टूटने वाला, तो होश में आ। यही महात्मा सब कहते हैं। वेद भगवान क्या कहता, अवेक अराइज एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच। अरे भाई जागो, होश में आ, इस ख्वाब खरगोश में तुम सो रहे हो, चलो और उस वक्त तक न ठहरो जब तक मंजिल मकसूद को न पालो। हम रास्ते के मुसाफर हैं, रास्ते को मुसाफर को सोना ठीक नहीं। अपने हाँ मोह माया में सो रहे हैं, अपने आप को भूल रहे हैं, तो ये कभी साफ फरमा रहे हैं। आगे
सोच समझ अभिमानी चादर भई है पुरानी, टुकड़े टुकड़े जोड़ जुगत सो सी के अंग लिपटानी।
कबीर साहब बड़ा एनाटॉमी का काम करने लगे और कहते हैं भाई जिस्म की नजर मारो, यहां टुकड़े टुकड़े जोड़कर
टुकड़ों को जोड़कर और फिर उनको सी कर तुम्हारे पर चढ़ा दी। ये जो चदर है जिसमें जो है टुकड़ों टुकड़ों का मिला हुआ, एक एक हड्डी कई हड्डियां, एक एक में कई हड्डी, सबको बड़ी खुशी सुरूपी से जोड़कर चमड़े का ऊपर खोल चढ़ा दिया और तुमको बीच में बिठा दिया। ये मशीनरी दिनों दिन खराब हो रही, इसकी तरफ दे आखिर ये मशीनरी छोड़नी पड़ेगी। बड़ी बेशकीमत मशीनरी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिली, ऐसे वो काम कर सकते हो जिससे तुम्हारा हमेशा का आना जाना खत्म हो सकता है, तुम हमेशा के सुख को पा सकते हो। अपनी तरफ नजर मारो, ये जींस तो तुम्हारा ऊपर खोल है जो तुम पर चढ़ाया गया, टुकड़े टुकड़े जोड़कर उस प्रभु ने बड़ी खूबसूरती से सी कर ऊपर खोल चढ़ाकर तुमको भी तुम्हारे ऊपर चढ़ा दिया, उड़ा दिए।
कर डारी मैली पापन सो लोभ मोह में सानी,
कहते इस चदर को तू जितने मैलाई कर दी, एक तो मशीनरी वेयर आउट हो रही है खत, दूसरे से और मल पर मल चढ़ा दिया। किस चीज की? लब लालचों की, विषय बकारों की, भोगो रसों की। कहते इसको बड़ी बुरी तरह तूने मैला कर रखा। अगर कपड़ा मैला हो माफ करना, और तो जिसको ये पता लगे जो नशे में हो उसको खाए, कपड़ा मैला हो खाए कुत्ते उसका मुंह चाट रहे तो भी उसको कोई पता नहीं, जो होश में आया तो देखते कपड़ा मैला भी इसको धो देना चाहिए, वो इसके धोने का कोई उपाय करता। कहते अरे भाई इस जिस्म रूपी चादर को कहो तूने जोड़ी हुई है, ये टुकड़े टुकड़ों को बनाकर जोड़कर सीकर खोल चढ़ाकर तुम इसको ओढ़ रहे हो, ये पुरानी हो रही है और साथ ही साथ तुमने इसको इतना मैला कर दिया है कि अब देखने को भी जी नहीं जा। किस चीज की मैल चढ़ाई है? कि कहीं लव लालच की, विषय भोगों की, काम क्रोध की, अहंकार की, ये मैले इस पर चढ़ रही है। तो जहां मैल हो वहां बीमारियों का घर बनेगा कि नहीं? इसमें बदबू भी होगी, सब कुछ होगा। बुरे ख्यालों का असर हर एक इंसान के अंदर है। एक बुरा ख्याल पैदा हो ना, हर एक बुरे ख्याल का अपना रंग भी है और अपनी बू भी है, याद रखो। जितने तामसिक ख्याल हैं उनका रंग स्याही माल, जितने कामी ख्याल हैं उनका रंग स्याही माल और ल्यूरिड रेड लाल, ये रंगों की काफी है। जो प्रेम भरे जीवन रखते हैं उनका रंग नीली रंग का भास मारना, आपको होता भगवान कृष्ण का नीला रंग बनाया है, समझे? प्रेम मुझे समझे। जो रूहानी पुरुष उनका येलो गोल्डन कलर, गोल्डन लाइट, सुनहरी रंग, ये श्वाएं हर एक इंसान से निकलती रहती है। जो सारी सृष्टि को समदर्शी बन चुका है उसके अंतर से है लाइट, ये कौन देख सकता कोई योगिक आई वाला दूसरे ने? हमारे हजूर फरमाते थे कि जब कोई इंसान गुरु के पास आता है तो वो देखता है कि ये इसके अंदर क्या है, जैसे शीशे की बोतल में अचार है या मुरब्बा, ऐसे देख देता है। मगर वो पर्दा पोशा है, उसकी मलों को साफ करेगा तो सही, मगर उसको न जितलाकर। और इसमें फिर बू भी है, काम के वेग में जो लोग जाते हैं उनके जिस्म को सूंघो ऐसी बू आएगी जैसे भेड़ों की रेवड़ की सड़ी बू होती है नी, ऐसी बू। कितना अतर प्लेन लाओ थोड़ी देर की खुशी, फिर वैसी बू, हर रोज बू। जिसके अंदर ईर्ष्या द्वेष क्रोध की अग्नि जल रही है, खामोश भाई, ईर्ष्या द्वेष की अग्नि जल रही है, उसकी जिस्म से ऐसी बू आएगी जैसे कपड़े को आग थोड़ी थोड़ी लगी हो ना तो वो जुलस रहा, ऐसी बदबू है। जिसके अंदर लव लालच के बड़े वेग चलते हैं दिन रात, उनके जिस्म से ऐसी बू आएगी जैसे
मछली की बू आती,
तुम्हारे ख्याल का बू भी। अगर तुम्हारे ख्याल में एक पाप पितर हो जाए, ये मले साफ, ये मले साफ हो जाएगी, ये खुशबू पैदा हो जाएगी। जो नेक पुरुष है, रूहानी पुरुष है, उनके जिस्म की बू लो जैसे चमेली की भीनी भीनी खुशबू। कोई टॉयलेट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो फरमा रहे हैं यही बात कि हमने इसको मैला कर रखा है, इसमें बदबूएं भर गई, या बदबू और गलाजें भर गई, वहां बीमारियों के घर ही बनेगा ना। ये जिन्हीं दर्दों का काम पैदा होता है हर एक इंसान के अंदर, ये उन लोगों जिनमें क्रोध और ईर्ष्या गुस्सा खून के दौरान में पायजन पैदा करते, दर्द पैदा कर देता, हमारे ख्याल ही बीमारी को पैदा करने वाला है। सर्व दो कुआ, अगर सिर्फ हम रूहानी बन जाए, हमारी हर चीज बेहतर होने लगती है, हर एक काम में बरकत पड़ती है। यारे भाई, इस चादर को मैली हो रही थी, पुरानी हो रही थी, वो तूने इतनी मैली कर रही है कि अब देखने को जी नहीं चाहता। और इस पर कैसी मैले चल रही है ये बताइए, कहीं काम की, कहीं क्रोध की, कहीं ईर्ष्या द्वेष, निंदा चुगली, धड़ेबंदी, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। अब ये मैल साफ कैसे हो, सवाल तो ये आगे फरमाते
यही लगो ज्ञान के साबुन, ना धोई भल पानी।
मल पानी कहते हैं ज्ञान के साबुन से ये धोई जा सकती थी, समझे, और सत्संग के पानी से मल मल कर ये मैल निकल सकती थी। ना सत्संग मिला ना ज्ञान मिला। ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान, ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान इल्म के पढ़ने पढ़ाने का नाम नहीं, इल्म पढ़ने पढ़ाने का नाम नहीं, इल्म नाम है उस ताकत का जो हमारे पढ़ने पढ़ाने में आधार दे रहा। इल्म उल इल्म का नाम ज्ञान है, इल्म का नाम ज्ञान नहीं। दुनिया इस भूल में जा रहे हैं। गुरु साहबों ने इसकी तारीफ की है, ज्ञान ध्यान धुन जानिए अकत कहावे सो। वो धुनी, वो प्रणु की ध्वनि जो हो रही है, उद्गीत हो रहा है, श्रुति हो रही है, उसका नाम ज्ञान है। उसके साथ कॉन्टेक्ट करना, ये साबुन का लगाना, वो कहां पर मिलता है? वो इंदू के घाट से ऊपर, उसको नाम करके कहा अदृष्ट गोचर नाम पाला। कहते ना तो ज्ञान का साबुन मिला जिससे मल धोई जाती, और ना सत्संग का पानी मिला जिससे मल मल कर धोते। हमें होश कहां आती है? सत्संग के पानी में, सत्संग में। दोनों ही चीजें ना मिली, मन की मल जाए कैसे?
यही लगो ज्ञान के साबुन, ना धोई मल पानी। सारी उम्र ओढ़ते बीती, भली बुरी नहीं जानी।
कहते हैं सारी उम्र इस चदर को पहने हुए हो गए, इसमें कितनी बुराई या क्या अच्छाई या कितनी मैले, इसका भी हमें पता नहीं। हमें जो में जा रहे हैं, अभिमान में जा रहे हैं, सुपरफिशियल लाइफ बतीत कर रहे हैं, हमें यह नहीं पता हमें क्या खामियां हैं। अब अपने आप की तरफ तवज्जो आए तो इन गलतियों का पता लगे, मैलों को पता लगे। अपनी आप की तरफ कभी तवज्जो नहीं की। दूसरे को तो मले नजर आती है, माफ करना, हमको अपनी मले नहीं नजर आ रहे। हमारे जो फरमाते थे कि हम में जो कमजोरियां हैं, पाप हैं, उनको या तो कोई सच्चा मित्र जो दूसरा देखता वो कहेगा, या दुश्मन कहेंगे, क्योंकि उनकी नजर हमेशा तुम्हारी तरफ रहती है, तुम क्या कर रहे हो। अपने आप की नजर अपने आप की तरफ कभी नहीं आई। कहते इसी जोम में जा रही है दुनिया सारी, कभी सब गए, कितनी मैल भर गई है अंतर, इसका भी पता नहीं। मगर अगर ना भी पता हो, जैसे ही एटमॉस्फेयर गिरदा गिरदा होगा, उसका बुरा असर होगा कि नहीं? कहने की बात بیماری پیدا ہوگی. ایک آدمی ولادت میں پڑا پڑا ہے, اس کو بیماری بن جائے گی کہ نہیں؟ آئے وہ بے ہوشی میں کیوں نہ پڑا ہو.
کمان جان جی اپنے, یہ ہے چیز ویرانی.
کہتے میں اس بات کو پرپک کر کے جانو, سب شنکوں سے رہت ہو کر, بیانڈ ڈاؤٹ, یہ مسلمان ہوا ہے. کیا کہ یہ جو جسم ہم پہنے ہوئے ہیں نا چدر دیے, یہ اپنی چیز نہیں, یہ پرائی آخر چھوڑنی. پرائی چیز کب تک برتو گے؟ جتنے دن کے لیے آپ کو ملی ہے برتنے, بس. یہ ایک بڑی اعلیٰ چیز ہے. عام لوگ کئی فقیر اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ منوش جیون بڑے بھاگوں سے ملا ہے, اور بڑا گولڈن اپرچونیٹی, سنہری وقت ہے جو تم کو ملا ہے, اس میں تم وہ کام کر سکتے ہو جو کسی یونی میں نہیں کر سکتے. اور وہ کیا ہے کہ تم اپنی آتما کو من اندر سے آزاد کر کے اپنے آپ کو جان سکتے اور پربھو کو پہچان سکتے ہو. یہ کام کسی اور یونی میں نہیں کر سکتے. مثال دیا کرتے ہیں کہ ایک فقیر کو رحم آ گیا کسی غریب کی غریبی پر, اور اس کو ایک پارس کا ٹکڑا دے گا, کہا بھائی جتنا سونا بنا سکتے ہو بنا لو, تمہاری غریبی نکل جائے. وہ بازار میں گیا, پتہ کیا کہ لوہا کس بھاؤ بکتا, پتہ لگا یہ 3 روپے من تھا, 5 روپے من ہو گیا, چل مہنگا ہو گیا لوہا, میں ٹھہر جاؤ. مہینے کے لیے وہ دے گیا تھا, پھر ہفتے کے بعد گیا, کہہ رہے اب تو 10 روپے من ہو گیا, کہ بھائی مہنگا ہو گیا لوہا. پھر گئے اور ہفتے 10 دن کے بعد گئے, پھر پتہ لگا 12 روپے ہو گیا. اسی فکر میں یہ لوہا سستا ہو تو خریدے, یہ پتہ نہیں کہ پارس کو لگے گا وہ سارے سونا بن جائے گا. میں نہیں اس طرف توجہ نہیں. نتیجہ کیا ہو گیا؟ مہینہ ختم ہو گیا, لینے والا پارس آ گیا, وہ غریب کا غریب ہی رہا. کیا بلوچین بڑے بہادروں سے ملا. اس میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں, آتم انبھو اور پرماتم انبھو کا, سیلف نالج اینڈ گاڈ نالج کو گین کر سکتے ہیں, حاصل کر سکتے ہیں. مگر یہ کیا سوچتے ہی رہتے ہیں, آج کریں گے, کل کریں گے, ابھی نہیں. یہ زیادہ ضروری کام ہے, یہ زیادہ ضروری ہے, یہ زیادہ ضروری ہے. جسم اور بدھی کے متعلق تو سارے کام نہایت ضروری ہو گئے, اپنے آپ کے متعلق غیر ضروری محسوس ہو رہا ہے. پتہ ہی نہیں کہ ہم کون ہیں, ہمارا کیا حشر ہو رہا ہے. ہم کو یہ بھی پتہ ہماری کیا کمزوری ہے, جسم ختم ہو رہا ہے کہ نہیں, اس کا بھی علم نہیں. ہم یہ سے ہم ہمیشہ ہی رہے. کسی کو موت یاد ہے؟ کوئی نہیں. جنہی چلن جانے سو کیوں کرے مٹھا, جنہوں نے احساس کر لیا, محسوس کر لیا ایٹ ہوم یہ بات ان کے دل کہ میں نے جانا ہے, پھر اتنے پسارے جھوٹ فریب ریاکاری کپٹ کے کیوں کرے گا؟ آج موت یاد ہو جائے سب نیک بات بن جائے, موت سے بھول چکی ہے. حالانکہ یہ ایک مسلمان امر ہے, نو ایکسیپشن ٹو دی رول. رانا راؤ نہ کو رہے رنگ نہ تنگ فقیر, واری آپو آپڑی کوئی نہ بانے دھیر, نہ راجا رہے نہ ریت رہی, نہ دنیا دار رہے اور نہ ہی ولی اوتار رہے. بڑے بڑے لوگ آئے جسم دیا اور چھوڑ گئے, ارے بھائی ہم نے بھی چھوڑ دیا. کہتے یہ پرپک کر کے جانو, یہ جسم تمہارا نہیں, پرایا چھوڑنا پڑے گا. گرو نانک صاحب جب جی صاحب میں کیا کہتے ہیں, کال کواری کایا, اس کایا کے کال کے ساتھ, کواری کایا کا کال کے ساتھ منگیوا ہو چکا ہے, اور وہ لہ جاسی پرنا لے جائے گئے, چھوڑنا پڑے. کہتے یہ پرپک کر کے جانو کہ یہ جسم تمہارا پرایا اپنا نہیں. کچھ دنوں کے لیے آپ کو یہ ایک مشینری ملی ہے کام بنانے کو, اس سے فائدہ اٹھا لو. اگر وشے بکاروں میں لمپٹ کر کے اس میں جیون بتیت کر لیا, جنم برباد چلا گیا. اگر اس کے ہوتے ہوئے جسمانی فرائض بھی, بدھی کے بھی, باہری سماجی کی پورے کرتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ تم نے اپنے آپ کی طرف بھی توجہ دے دی اور اس کے متعلق بھی کام کر لیا, تینوں پہلو سے تم مکمل ہو گئے, تمہارا جیون سفل ہو گیا. हम महत्वपूर्ण ही कहते हैं जी।
कहत कबीर धार कहत कबीर धर राखो जतन से फिर हाथ नहीं आनी।
ये जिसम धर है मिट्टी है नीहर है कहते इसे यतन करके भाई संभाल कर रखो इसे काम लो एक बार हाथ से ये निकल गई फिर तुम्हारे हाथ में फिर देखो ना पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवे ऐसा ये नहीं हुआ एक बार तो निकल गई ना फिर कम मिले फिर तुम ये काम कर सकते इसलिए कि भाई आला से आला मौके आपको ये तो समा मिला अति सुंदर इससे फायदा उठा लो। और वो क्या है कि इसमें जो मने लगी है जन्मों जन्मों की याद लग रही है इनको मैले को धो लो ज्ञान के साबुन और सत्संग के पानी से। अब ज्ञान के मुताबिक मैंने अर्ज किया सत्संग किसको कहते हैं सत्संग का पानी किसको कहते हैं सत्संग आम दुनिया ये समझती है जहां 10-20 हजार या 500 या 1000 आदमी बैठ गए वहां कोई इतिहास पढ़ दिए या कोई और जिक्र अधिकार हो गया उसका नाम है सत्संग मत संतों ने इसको सत्संग नहीं माना सत्संगों ने सत्संग की तारीफ संतों ने इस तरह की है जय सतगुर तय सत्संगत बढ़ाई यहाँ पर कोई सत्स्वरूप हस्ती है उसकी सोबत का नाम सत्संग है बाकी का नहीं। एक जागता पुरुष हो 1000 आदमी सो रहे हो तो हम कह सकते हैं कि जागते पुरुष की संगत वो सबको जगा सकता सारी दुनिया मोह माया में सो रही है मोह माया सब जग सोया अगर एक जागता पुरुष हो वो मोह माया से ज्योति होकर सेल्फ एनालिसिस करके अपने आप को जान गया प्रभु को पा गया माउथ पीस ऑफ गॉड बन गया तो वो सबको जो उसकी संगत में आए सबको इससे निकालकर अपने आप का अनुभव का तजुर्बा करा सकता है आलिम आपको इल्म दे सकता वकील आपको वकील बना सकता है डॉक्टर आपको जिस्म का इल्म दे सकता है मैं कोई आत्म अनुभवी पुरुष ही आपको आत्म अनुभव का तजुर्बा कराएगा बाकी कोई नहीं कराएगा। तो कहते सत्संग में जाओ वहां जागते पुरुष के कलाम सुनोगे अधूरे पुरुषों की सोबत न करो पूर्ण पुरुषों की सोबत करो वहां हर एक चीज की कसौटी मिलेगी कैसे एनालाइज कर सकते हो कैसे मलों को दूर कर सकते हो। तो ये था कबीर साहब का शब्द जो आपके सामने रखा गया इस वक्त एक और शब्द गुरु अमरदास जी साहब का छोटा सा आपके सामने रखा जाता है गौर से विचारिए उन्होंने क्या फरमाया। गुरु अमरदास जी साहब का जीवन आप सब भाइयों को ज्यादातर लोगों को पता है जिनको उनके जीवन के इतिहास पढ़ने का मौका मिला उनका जीवन ये बतलाता है कि 70 साल तक वो इसी तलाश में रहे परमार्थ की खोज में रहे और नंगे पैर हरिद्वार तीर्थ पर जाते रहे इसी तलाश में वहां कई साधुओं संतों महात्माओं से मिलाप हुआ होगा वो इतिहास हमें ये बतलाता नहीं किन किन से मिले उनके कलाम हमको बतलाते हैं कि क्या क्या उन्होंने किए होंगे देखे होंगे। तो एक बार वो रास्ते में सफर करते हुए जा रहे थे एक ब्रह्मचारी से उनका तलक हुआ वास्ता पर सफर किया ब्रह्मचारी ने पानी मांगा उन्होंने पानी का कटोरा या गिलास भर के दे दिया उसने पी लिया और पूछा आप तुम्हारा गुरु कौन वो लोग सत्यवादी होते आज किसी से पूछे तुम्हारा गुरु मेरा गुरु परमात्मा अरे भाई जिसको देखा ना वो गुरु कहते बिन देखे कैसे को ध्यान जिसे तुम बातचीत नहीं कर सकते वो पाने का काम कैसे करेगा। खैर उन्होंने कहा भाई मैंने गुरु अभी धारण नहीं किया और वाक्य भी यही था कि किसी महापुरुष के चरणों में नहीं बैठे थे पूर्ण पुरुष नहीं मिला था। तो ब्रह्मचारी ने कहा हो मेरे जितने कर्म धर्म से आज भ्रष्ट हो गया निवरण से मेरा तालुक आ गया। कबीर साहब ने इस बात का थोड़ा जिक्र किया क्या कहते हैं कबीरा निगुरा न मिले पापी मिले हजार हजारों पापी मिल जाए कोई फिक्र नहीं मन निगुरा न मिले इसका मतलब क्या है? जो गुरु वाला होगा ना, किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में बैठे, वो तो सेल्फ एनालिसिस आत्म अनुभव में जाएगा, वो कमजोरियों को दूर करेगा। जो जिसको गुरु अनुभवी मिला ही नहीं, वो जिस्म का रूप खाने पीने भोगने में लगा, मर मर के दुनिया में आएगा और फिर जाएगा। पापी आदमी भी है, मरो के सिर पर कोई है, उसको थोड़ी होश है। टू फॉल इन सिन इज मैनली, बट टू रिमेन देयर इज डेविलिश। पापों में इंसान गिरता है, समझा? मर उसमें गिर रहे ना पाप है, उसको एहसास है कि मैं पापों में गिर रहा हूं, निकलेगा। कोई उसके सिर पर हाथ है जो उसको निकालेगा, या तो वो तो फिर भी ठीक। मर जिसको मिले ही कोई नहीं, ऐसे पुष्प के दर्शन ही नहीं, बड़ी चोट देर पर आए, घर में आए, किसी विचार में थे कि गुरु का क्या करना चाहिए। घर में उनकी गुरुंग साहब की लड़की भी आई हुई थी, ये इतिहास बनाता। अब उनको नाम का तो रस था ही, एक नाम के रसिये से वाणी का उच्चारण एक और नया रंग देता, नशा देता। सुनी वाणी, उठ खड़ी हुई, पास आ गए और बीबी ने पर्दा कर दिया, क्योंकि सुसर थे। कहते बीबी इसे पर्दे का वक्त नहीं, ये बतला ये चीज जिसका जिक्र तुम कर रहे हो कहां से मिलते। उसने कहा मेरा गुरु नानक साहब की ये वाणी है, मेरे पिता उस गद्दी पर आज विराजमान है, ये दौलत उनसे मिलेगी। वो उनके कुड़म थे, क्या चल काकी साथ चल, साथ चल पड़ी। बाहर जाकर आप खड़े हो गए, लड़की अंतर गई। गुरुओं के साहब ने पूछा भाई कैसे आई, उन्होंने जिक्र किया किस तरह आए हैं, वो बाहर है। ये लोग बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, ये नहीं कहते हम आसमानों से उतरे हैं, बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। कुड़म थे, गो निगोरे थे उस वक्त तक, पूर्ण ज्ञान की तरफ अभी प्राप्ति नहीं हुई थी। मगर उसको गले लगा के मिले के लगे, क्योंकि कुड़ुम थे तो कह रहे महाराज मैं आप कुड़ुम बनकर नहीं आया, दास बनकर आया हूं। फिर 12 वर्ष पानी दोहया बड़े भाव के साथ, जिसकी मिसाल तारीख में कोई नजर नहीं आती। वो क्या है कि ब्यासा नदी 5 कोस, ब्यासा नदी खडूर साहब से थी, जहां के गुरु अंगद साहब रहते थे। पानी जाके भर के लाना और उनको स्नान कराना, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। मत जिस भाव से वो जाते थे, वो क्या पिछले पांव जाते थे कि कमर गुरु की तरफ ना हो जाए। सवाल यह कि बैग गुरु की तरफ ना हो, इस भाव से 12 वर्ष पानी का। तो उनको जब गुरु अंगद साहब के चरणों में नसीब हुआ ना, ये सब खोज तो थी, 70 साल से तो खोज थी, मले भरी नजर आती थी, निकलने का कोई उपाय न था। बड़े बड़े घाटों पर फिरे, बड़े बड़े महात्माओं से वास्ता पड़ा होगा, जिसका इतिहास में जिक्र नहीं, मगर उनकी जो वाणियां हमें बतलाती हैं, मगर ये मल ना दूर हो सकी। जब गुरु अंगद साहब के चरणों में आए हैं, इस बात की समझ आई, तो ये शब्द उच्चारण किया ताकि दुनिया गलती में न रहे कि ये मन की मले कैसे जा सकती। बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं। बड़ी
राग बढ़हंस महला तीसरा, एक ओंकार सतगुरु।
मन मैले सब किच मैं, तन धोते मन अच्छा ना हो।
फरमाते हैं कि जिसका मन मैला है उसका सब कुछ मैला। मन में एक काम का ख्याल आया, सिर से 5000 चढ़ गए। एक क्रोध का ख्याल आया, सिर से 500 आग जल गए। एक लब लाल जैसा कुत्ते की तरह होंकने लग जाता, सारे जिस्म रंग रोशे में श्राद्ध कर जाता। क्या रे भाई, जिसके मन के अंदर कोई आलाइश का वेग आया, जिसका मन मैला उसका सब कुछ मैला। उसके कपड़ों में वैसी बू आएगी, जैसे ख्याल आते वैसे उसके कपड़ों में बू आएगी, जिसे मैं भी आएगी कपड़े में आएगी। हर एक इंसान के पसीने में खास खास किस्म की बू है, जैसे ख्याल आते वैसा रंग। तो कहते जिसका मन मैला है, अरे भाई उसका सब कुछ मैला है। इस मन के धोने का उपाय करो, तन धोते मन अच्छा न हो। क्योंकि तीर्थों पर रहे थे ना, वहां क्या, आओ भाई स्नान किया, चलो पाप धोए गए, चलो भागो। कहते भाई तन के धोने से मन की मैल नहीं जाती। कबीर साहब ने भी कहा, जल के मज्जन जे गत होए, नित नित मैं निकतावे। अगर जल की मजन करने से इंसान की मल मन की चली जाए तो मेंढके हर वक्त वही होती है, मच्छी भी होती है। तो मन की मल अगर जाएगी तो मन के धोने का कोई उपाय करो, जिस्म की सफाई से नहीं। कितना स्वच्छ होकर बैठे, एक काम का ख्याल जैसे 5,000 भर गए। तो मन की सफाई का स्वाद, अब मन की सफाई कैसे? और दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं? वो तन के धोने में लगे हैं, बाहर की स्वच्छता कर रहे हैं। इसका यह मतलब ना समझो कि बाहर की स्वच्छता की जरूरत नहीं। क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तन है, ये हरि मंदिर है भाई, इसमें जिस ये शरीर हरि मंदिर है जिसे सच्ची की जोत। आप बाहर मंदिरों को कितनी सफाई से रखते हो, इस हरि मंदिर को भी साफ रखो। बाहर से भी रखो और अंतर से भी रखो। हम बाहर से तो रखते हैं, अंतर से नहीं रखो। दिन रात इसी की बनावट में रहे, अंतर की मल साथ जाने से एक वेग के चलने सब जा चढ़ जाती। दुनिया के लोग बाहर मुखी साधनों में लगे पड़े हैं। तो मन की मैल तन की सफाई से नहीं जाएगी।
ये जगत भर में भुलाया बिरला पूजै को
है। कहते जगत के लोग भूल रहे हैं क्या, कि बाहर मुखी सफाइयों में तो लगे पड़े हैं। कहते शायद इसी से कल्याण हो जाएंगे। ए जगत परम पुलाया बिरला बुझे को, किसी बिरले बिरले इंसान को इस बात की सूझत होती है। हम कर क्या रहे हैं भाई, मैल तो चढ़ी थी अंतर आगे ही जन्मों जन्मों की, और इंद्रियों के घाट से मल बाहर आ रही थी। वेग बाहर से असर करते हैं इंद्रियों के घाट से। इंद्री जीत 5 दोख 13 है। अगर इंद्रियों को दमन कर लो, जीत लो, कंट्रोल कर लो, तो आप 5-6 डाकू के हमलों से बच जाओगे। आंखों से काम का असर आता, कानों से क्रोध भड़कता, जैसे गुस्सा चले तू बोलता और भड़कता है कि नहीं। तो हर एक इंद्री से खास खास किस्म के मुंह कंठ में, तो हर एक का असर है। आप अपनी जगह दुनिया इस भूल में जा रही है कि बाहर मुखी सफाई में तो लगी है, इंद्रियों के घाट के साधन तो कर रही है। बड़े बड़ी दुकानों घाटों पर जाता है ये इंसान, मगर वहां से वही साधन मिलते हैं जो तन और इंद्रियों के घाट के। इंद्रियों के घास से जब तक इंसान ऊपर ना आए, जहां से कि ये हम पर बाहर की मैलें असर करती हैं, ये स्वच्छ कैसे होगा? कहते जगत भ्रम में जा रहा है, सारी दुनिया के लोग भ्रम में जा रहे हैं। इस बात की सच्ची समझ किसी बिरले बिरले इंसान को होती है जिसको कोई अनुभवी पूर्ण पुरुष मिल जाए। आगे फिर इसका उपाय बतलाएंगे कि इस मन की सफाई का क्या उपाय है। मन की मल दूर करनी है ना, इसका कोई उपाय भी होना चाहिए। अगर ये कुछ जो कुछ हम कर रहे हैं बाहर मुखी अपरा विद्या के साधन, अगर ये सारे साधन मन की मैल को नहीं धो सकते, तो कौन सा साधन है जो मन की मैल को धो सकता है? आगे जवाब दें।
जप मन मेरे तू एको नाम, सतगुर दिया मोकोए निधान।
कहते हैं मेरे मन तू एको नाम जप, बस एक ही इलाज कर, क्या नाम को जप। नाम किसको कहते हैं सवाल ये। नाम नाम तो सारा जहां ही कट रहा, मगर नाम की असल समझ किसी किसी को। नाम नाम सब कहते हैं, नाम न पाया कोई, नाम न पाया कोई, नाम की गति है न्यारी। तो कहते हैं नाम किसको कहते हैं सवाल ये। गुरबानी में इसका निर्णय किया, सब महात्माओं ने आपको अपनी जगह इसका निर्णय किया। इस वक्त गुरु अमरदास जी साहब की वाणी है, आप देखिए वाणी से हम पूछेंगे कि नाम किसको कहते हैं। आप विचारिए ये जितने नाम हैं ये किन्नों ने रखे? ऋषि मुनियों महात्माओं ने जब भी वो दुनिया में आए हैं उस प्रभु के समझाने बुझाने के लिए कोई न कोई नाम बरता। समझाने बुझाने के लिए ऋषि मुनियों महात्माओं ने रखे, जिसके नाम रखे उसका तो कोई भी नाम नहीं भाई, वो तो अनाम है। जैसे गुरु साहब ने कहा कि नवस्तंग नाम नो ने, ये नाम हम लोगों ने रखे, ऋषि मुनियों महात्माओं ने रखे, जब तक ये नाम उस प्रभु के बोध कराने के लिए हम सब पर कुर्बान है, भले हार जाओ जेते तेरे नाम है। ये गुरबानी कह रहे हैं, हम नामों के झगड़ों में फंस रहे हैं, माफ करना। कोई कहता है अल्लाह हु ऊंचा है, कोई कहते वाहेगुरु ऊंचा है, कोई कहते नहीं ओम ऊंचा है, कोई कहते कोई और गार्ड ऊंचा है, आप अपनी जगह। अरे भाई ये सारे नाम ऋषि मुनियों महात्माओं ने रखे उसके बोध कराने के लिए, सभी ऊंचे। जब तक तुम अक्षरों से चलकर जिसको ये अक्षर बोध कराते हो उसके साथ नहीं लगते, काम नहीं बनेगा। अब दुनिया में देखेंगे कि लोग अक्षरों की उलझन में फंसकर असलियत से दूर हो रहे हैं, पशु वृत्ति को बना रहे हैं, विवेक बुद्धि से काम नहीं ले रहे हैं। नतीजा क्या है? कशमकश, क्लैश बिटवीन क्लास एंड क्लास, तीन आदमी मुख्तलिफ मुल्कों के थे, एक दूसरे की जबान से नावाकिफ थे, एक था अंग्रेज, एक था पठान, एक था पंजाबी। उन्होंने एक जमीन लीज पर ले ली और हर एक ये कहने कहेगा वीट सो करेगा, दूसरा कहना खूब गंदम बोएगा, तीसरा कहती कनक बीजनी है। बात वही थी, पर एक दूसरे की जबान से नावाकफी के सबब से हर एक को यही जोर था ये मेरी जमीन है, मैंने भी लीज पर ली है, मेरी चीज बोई जानी चाहिए। आपस में लड़ने लगे। एक सियाना पुरुष वहां से गुजरा जो तीनों जबानों से वाकिफ था, कह रहे भाई तुम्हारा झगड़ा क्या है? सबने आपको अपनी जगह कहा। अच्छा फिक्र न करो, घबराओ नहीं, ठहर जाओ, वो चीज ले आओ जिसको तुम बीजना चाहते हो। चीज लाए तो वही चीज थी जो बीजना चाहते थे। भाई सैकड़ों आशिक हैं, दिलाराम सब का है, मजब मिलत तो जो ना है मगर काम सबका है। निशाना तो एक है, रजब निशाना एक है, तीरंदाज अनेक, जिसको पाना वो तो एक ही चीज है भाई, इसको राम कह के पाओ या वागुरु या अल्लाह या खुदा कह के पाओ। इन अक्षरों की कश्म कश्म क्यों फंसते हो? सभी काबिल तारीफ है। तो दो किस्म के नाम हुए, एक अक्षरी नाम, एक वो पावर नाम, वो पावर कह दो जिसके ये अक्षरी नाम बोध कराने वाले। दुनिया ज्यादातर अक्षरी नामों में, ये पहला कदम है, इसकी भी जरूरत है, जब करना पहला कदम है। मगर गुरबानी क्या कहती है? जहां बोलता अक्षर आवा, जब बोलोगे ना तो अक्षरों से बयान करोगे ना, जहां बोलता मन नहीं रहावा, बोल अबोल मद है सोई, जस है तत लखे न कोई। वो अनुभव करने वाली चीज है जो इस बयान से ऊपर है। तो संत महात्मा कहते हैं दो किस्म के नाम, सब महात्माओं ने यही कहा है, मौलाना रूम साहब भी यही फरमाते हैं। इस्म खानी राव मुसम्मा रा बिजो, तुम नाम ले रहे हो, जाओ नामी को पकड़ो, बेमुसम्मा इस्म कह बाशिंद को, बगैर नामी के खाली अक्षरी नाम तुमको पूरा फायदा नहीं दे सके। इसका ये मतलब ना समझो कि हमने अक्षरी नामों से काम नहीं लेना, ये पहला कदम है, पर इस कदम से चलकर हमारे अंदर दुनिया बस गई है। कैसे? दुनिया की याद कर करके, सिमरन कर करके, हमने प्रभु की याद से दुनिया के याद को काटना, ये पहला कदम है। मगर इससे आगे चलकर जिसको ये अक्षर बोध कराने हैं उसके साथ लगना है, हमेशा की शांति होगी। गुरबानी क्या कह रही है? नाम मिलिए मन तृप्तिए, नाम के मिलने से मन तृप्त हो जाता, किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। वो कौन सी चीज है जिसके पाने से सब कुछ पाया हुआ हो जाता? उपनिषद सवाल करते हैं, वो नाम है, वो प्रणव, इसको प्रणव की धुनी कहते हैं। उपनिषदों ने इसे उद्गीत करके बयान किया, उधर करा, वेदों ने श्रुति कहा, मुसलमान फकीरों ने उसे कलमा कहा, कलमे से 14 तबक बने। इधर कहते हैं नाद से 14 भवन बने, उधर कहते हैं नाम के धारे खंड में बने। बात तो वही हुई, नामे ही थे सब जग हुआ, बिन सदगुर नाम न जा पा। जब जी साहब ने कहा जेता कीता तेता नाव विंडा विना ही कोता, जिन्ना किया हुआ पसारा वो सब नाम है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां नाम ना हो। और नाम ये कैसा है, नानक नामे के सब कुछ बस है, कंट्रोलिंग पावर है ये नाम, ये सब के पैदा करने वाली हर अरुतम नाम है जिन सृजा सबको। तो अक्षरी नाम ना रहा ना, अक्षरी नाम जिसको बोध कराते हैं वो असल नाम है, आप कह दो वो सच्चा नाम है कह दो, ये बाहरी नाम है कह दो। तो जो असल नाम है उस वो कहां पर है सवाल अभी है। वो पावर हुई ना, गुरु अर्जुन साहब ने जवाब दिया नाव ने दे अमृत प्रभु का नाम, ये बात समझने वाली है ठंडे दिल से कि हम कर क्या रहे हैं और करना क्या। नाव ने दे अमृत प्रभु का नाम दही में इसका विश्राम, नाव निधियों के देने वाला हर एक किस्म की खुशी देने वाला प्रभु का नाम है, उसका बात आपके देह के अंदर है। सब्सटेंशियल समथिंग बन गए, डिवाइन लिंक है जिसके ये अनेकों नाम रखे गए, मगर कहां आपके अंतर है और कहां पर है सवाल तो ही है। गुरु अर्जुन साहब ने एक पूरी अष्टपति सिमन की महिमा में गाई, ये पहला कर्म सिमन की महिमा गाते गाते आखिर जाकर क्या कहते हैं, बड़ी महिमा गाई है इसे, रिदिये सिदिये चौकुंड में नीच जाना जाता है सब कुछ कर कर आके आखिर कहते हैं हर सिमन में अनहद झुनकार, अनंत की झुनकार बजती है। ये जो अनंत की झुनकार है ये नाम की दुनिया है, जो गटगट में हो रही है ये प्रणव की दुनिया है, जिसके साथ लगने से मन तृप्त हो जाता। मगर ये नाम की ध्वनि कहां पर मिलती है, इस काया नगरी अंदर मंगल चले योगी ता नाव पले पाई, पिंड में नहीं जब तक एनालाइज करके इनों के घाट से ऊपर ना हो ये नाम की ध्वनि प्रगट नहीं होती। फिर नाम की तारीफ की, नाम जपत कोट सूर उजारा बिन से मधेरा, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश होता है नाम के जपने से। अरे भाई अक्षरों के नाम के जपने से करोड़ों सूर्यों का प्रकाश नहीं होता, सारी सारी उम्र का त्याग बंद करो तो हम देना। तो नाम में ज्योति भी है, नाम में श्रुति भी है, इन्हों के घाट से ऊपर मिलता है, जब तक आप इन्हों के घाट पर बैठे हो तब तक नहीं मिलेगा। तो कोई अनुभवी कोई जन हर्ष्यो देवे जोड़ आपको पिंड से ऊपर आना पहला कदम हो गया कि नहीं, सेल्फ एनालिसिस करना। जब सेल्फ एनालिसिस करोगे इन्हों के घाट से ऊपर आओगे, बाहर की जिन्नी आलाशी बस्ती हैं वो नहीं बसेंगी, इन्हीं की घास से आलाश है। अंतर में नाम का महारस मिल जाए, नाम महारस पियो, जब वो महारस पा जाए इन्हों के भोगों के रस फीके पड़ जाए, फिर बाहर की तरफ रुचि नहीं जाएगी, ये गति बन जाए। मन मूसा पिंगल ब्याह पी पारा रीना, मन का चूहा, चूहे को अगर पारा पिला दो वो भारी हो जाता है, दौड़ने दुखने से रह जाता। अगर कहते मन रूपी चूहे को पारा पिला दो तो दौड़ने दुपड़े से रह जाए। तो नाम से मन खड़ा होता, नाम पावर, नाम की तारीफ की, इस नाम के साथ कौन लगता। फरमाते हैं तोर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे, जिनको थोड़ो हे मालिक तू दया करे वो इस नाम के साथ लगता। कहते क्या मिलता है कौन आनंद पहले सुख हुआ, सुख और शांति मिलती है, निशानी क्या है उसकी, तितकार अनहद वाला, ये छह चक्रों से ऊपर आकर जो अनहद की दुनिया है ना, दर्जे बदर्जे वो आगे ले चलती, ये लोएस्ट लिंक है जिसके सुनने से मन खड़ा होता है। जब जी साहब ने चार पूरी पौड़ियां इसी पर दी है, सुनिए की मैं मंगाई, सुनिए सड़ा गुना के गा सारे गुरु का अबोर्ड बन जाता, सुनिए शेख पीर पदशाह, सुनिए अंधे पावेरा, सुनिए हाथ होवे असगा, यहां रू नहीं पहुंचेगी वहां पहुंचने का ये जरिया बन जाता, अंधों को भी अंतरस्ता मिल जाता। कबीर साहब ने कहा शब्द बिना सुल्तान री कहो कहां को जाए, जब तक अंदर शब्द की धुनि ना मिले ये स्वतंत्री है किधर जाएगी। शब्द बिना स्वतंत्री कौ कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का बार बार भटका था। जब तक शब्द का द्वारा न मिले कहां जाएगा, भटक कपड़े। सो नाम से मन की आलाशें दूर हो जाती, इसके कमाने से सो निकर्मी जो शब्द विचारे वो निकर्म हो जाता। एक सुकर्म है एक बुरे कर्म करता है, एक निकर्म है। रिपोज इन एक्शन कह दो, जब तक इंसान रिपोज इन एक्शन या निकर्म नहीं होता जो कर्म करे उसी सजा भुगते। तो महापुरुष के पास आने पर वो अगला जीवन तो आपका नेक पाक बना देता है, सदाचारी। एक लाइन ड्रॉ करते इसे उल्लंघन न करो, प्रारंभ खुशी से भोग लो। आत्मा की खुराक नाम है चेतन, इससे आत्मा बलवान होगी। दुनिया के दुख जो प्रारंभ अनुसार आएंगे भी वो इतने दुखदायी नहीं होंगे, पिंचिंग नहीं रहेंगे। जो संचित कर्म है वो दग्ध हो जाएंगे, जब दाने जल जाए फिर वो बीज तो नहीं उगते ना, सेल्फलेस हो गए फिर कौन उसको भोगेगा। तो नाम से मन की मैले जाती है, यही नाम के मुतालिक और महात्माओं ने कहा है कि नाम ही से मन धोई जा सके। गुरु नानक साहब ने जब जी साहब में इस बात का जवाब दिया बड़ी खूबसूरती से, मिसालें दे देकर, परिये हथ पैर तंदे पानी धोते उतरस खे, हाथ पांव अगर मिट्टी से भर जाए तो पानी के धोने से साफ हो जाते। फिर मिसाल देते हैं, मूत पलीची कपड़ हो दे साबुन लिए दो, अगर गंदगी से कपड़ा भर जाए कहते साबुन के लगाने से साफ हो जाए। फिर आगे कहते हैं, पढ़िए मत पापों के संग, अगर मती पापों से भर जाए तो और तो पढ़ना वो नाम की नजर से हो जाए। तो नाम अक्षर ना रहा है ना, नाम के कॉन्सेप्ट क्या मिलेगा इसकी तारीफ की। अदृष्ट अगोचर नाम अपार, अतरस मीठा नाम प्यारा। अदृष्ट है बाहरी दृष्टि का मजमून नहीं, जब तक बाहर से हटोगे नहीं ये नहीं मिलता। अगोचरिणियों के घाट से ऊपर आओ तब नाम मिलता, बड़ा प्यारा नाम है उसमें बड़ी भारी मिठास। उस रस को जब वो रस आवा ये रस नहीं बावा, दुनिया के रस फीके पड़ जाए। इसी के मुतालिक भगवान कृष्ण जी ने उनके जीवन में इसी का जवाब आया। हर एक महात्मा ने इसे कुछ न कुछ जिक्र किया है कि मन की मैल कैसे जा सकती है, मन कैसे काबू हो सकता। वो कहते हैं कि जमुना दरिया में उन्होंने छलांग लगाई, नीचे हजार मुंह वाला सांप था, उसके सिर पर बांसी की धुनी बजाते हुए उसको नाग नर्तन किया। ये हजार मुंह वाला सांप कौन सा है भाई, ये मन रूपी सांप जिसके हजारों तरीके हैं लाग चढ़ाने के, वो गटगट में बैठा। प्रणव की धुनी जो गटगट में हो रही उसको बजाने से सुनने से नाग नर्तन हो जाएगी। तो सब महात्माओं ने एक ही जवाब दिया, मन के काबू करने का, मन की जो गलासें भरी पड़ी है आइंदा गलासें आ रही हैं सबके वाहिद इलाज नाम। जब तक नाम का तलक नहीं होगा काम नहीं बनेगा, मगर बिन सदगुण नाम न जा पाए। ये भी कहते हैं बगैर अनुभवी पुरुष आमिल पुरुष कहो, जो सत का स्वरूप है उसके बगैर ये नाम का सूजती नहीं हो कोई जन हर्ष देवे जो। तो कहते हैं ये दौलत मुझको किसने दी। फिर आगे कहते हैं मन मेरे तू जब एको नाम सदगुरु मोह को दियो एओ निहार। जो गुरु अमरदास जी साहब कहते हैं कि मेरे सदगुरु ने मुझे ये खजाना बख्शा है, ये किसी की बख्शीश है जो तुम्हें इंद्रियों के घाट से ऊपर लाकर इसका कॉन्टेक्ट दे। जब तक आप इंद्रियों के घाट पर बैठे हो इस दौलत से खाली रहे। यही नाम की एक ऐसी दौलत है जो हमेशा रहने वाली है। एको निचल नाम धन हो धनाविदा, हमेशा रहने वाली दौलत नाम की है, इससे छूटो जितनी दौलतें सब फना होने वाली। तो कहते ये कब समझ आए, जब गुरु अंगद साहब के चरणों में आए हैं। आगे क्या दिया, इक रहो ये फंडामेंटल असूल है, इक रहो हृदय में धारण कर लो ये मुसलमान अमर है कि नाम को जपो से मन की मैले दूर होंगी, तन और इंद्रियों के घात के साथ में उसे नहीं। ये दौलत कहां से मिलेगी, कहते सतगुरु ने मिली थी। कारण इंद्रियों के घात से ऊपर یہ چیز ملتی ہے. جب تک اوپر نہ ہے کام نہیں بنتا. امینوں کے گھاٹ پر جسم کا روح بنے بیٹھے ہیں, اور جسم کا روح بن کر اگر انیوں کے گھاٹ کے ہی سادھن کر رہے ہیں تو پھر بتا ہم انیوں کے گھاٹ کے اوپر کیسے آئے ہیں. اگر کوئی بھائی اوپر جا سکتا ہے تو مبارک, لیٹ ہم ٹرائی اینڈ سی, کوشش کرے اور دیکھے, مگر نہیں جا سکتا. کوئی پیچھا سنسکار اگر اوپر بھی آئے آگے گیا اٹھنے
سدھوں کے آسن جے سکھے اندری وس کرے کمائے من کی میں نہ اترے
فرماتے ہیں. اب ذکر کر رہے ہیں کہ سادھن حج یوگ کے لوگ 84 آسن ہیں ان کے, 84 لاکھ ہیں ویسے, مگر 84 ان میں سے پرامیننٹ ہے پرسدھ. کہتے ہیں اگر سدھوں کے سارے آسن بھی انسان کرنا سیکھ جائے تو بھی من کی میل نہیں جاتی. یہ تو جسم کے آسن ہے نا, تھوڑی دیر کے لیے دمن بھی کر لو مگر جسم کا خیال ہے, اسے اوپر جانے کا سوال نہیں پیدا ہوا, اس لیے من کی میل نہیں جائے گی. مجھے کانپور میں ایک ایسے بھائی ملے ہیں جو آسن کرنے والے ہیں, انہوں نے مجھے اپنے فیس کے بہت سارے نقشے دکھلائے ہیں کہ کانچ کو توڑ کر نیچے بچھا لینا, ننگے بدن لیٹ کر اس پر اوپر روڈ رولر جو 350 من کا ہوتا ہے اوپر کھڑا کر کے لیکچر دیتا. اتنا سادھن کر میں نے پوچھا کیوں بھائی, من کی حالت ہے من کی حالت بھائی, یہ تو 1 روپیہ کمانے کا ذریعہ. تو یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں گرو رامداس جی سے معلوم ہوتا ہے انہوں نے کئی سدھوں کے آسن بھی کیے ہوں, کوئی بڑی بات نہیں یا ان سے ملے ہوں. کہتے ہیں من کی محل سدھوں کے آسن کے کرنے سے بھی نہیں دور ہوگی. اندریوں کو بھی دمن کر لو تھوڑی دیر کے لیے, پھر جب نکلے پھر بھاگے گا. تو من کو ہمیشہ لیے کے لیے قابو کرنے کا اپائے کیول نام کی دیتی جو گٹ گٹ میں ہو رہی ہے.
اس من کو اور سنجم کو نائی بن ستگر کی ترنا.
کہتے ہیں بھائی اس من کی اگر محل آپ نے دور کرنی ہے, من کو قابو کرنا ہے, اس کا اور کوئی اپائے نہیں سوائے کسی ست روپ ہستی کے چرنوں میں جائے. تلسی صاحب کہتے ہیں سرت سادھ سنگ ٹھہرائی تو من پھرتا کس پائے. سرت سادھ کی صحبت کے انتر ٹھہرتی ہے اور من کھڑا ہوتا ہے. من ستیا لیتا ہے سرت سے, آتما سے, آتما میں کشش پاتی ہے کسی آگ بہی پوش کے چرنوں میں بیٹھ سکتا. یہی مولانا روم صاحب نے کہا, نفس سے ہرگز نہ پوچھے جو ضلع پی, یہ نفس کبھی مرتا نہیں جب تک اس پر کسی ان بھائی پوچھ کر سایہ نہ پڑے. اس منڈل میں اثر ہے, چارجنگ ہے, ٹکاؤ ہے. اگر تم یکسوئی دل سے بیٹھو گے اس کا پورا فائدہ اٹھا سکتے. یہ نہ ہو من دیا کہیں اور ہی تن سادھو کے سنگ, کہے کبیر گوری گجی کیسے لاگے رنگ. یہ بات نہ ہو, تھوڑی ایک سوئی سے بیٹھو ٹکاؤ ملے گا. ساتھ کے سنگ مجھے پرب نے رام پرب نزدیک بھاسے گا. یہی سوال اگر یہاں سے اٹھ جاؤ گے ستسنگ کسی ان بھائی پوچھ دور چلے جاؤ گے, وہی چیز بڑی ویسے کی ویسے سے معلوم ہوتی ہے. جس ڈٹھی عمل رہتی ہے یہی, اسی لیے کہا جس کو دیکھنے سے تھوڑی دیر کے لیے ٹکاؤ بنے سمجھو وہ مہاتما. تو کہتے من کے قابو کرنے کا علاج کسی ان بھائی پوچھ کے چرنوں میں جانا. وہ کیا کہتا ہے, تمہارے اندر نام ہے چھوڑ پنڈ اور چل اوپر. اس نام دھنی کے ساتھ لگ اس کے لیے من ہمیشہ کے لیے قابو ہو جائے گا. وہ نام کی دھنی کے ڈیولپ ہو جانے بڑھ جانے سے اکھنڈ کیرتن ہونے لگتا. اکھنڈ کیرتن اب بھی ہو رہے ہیں, ہم سننے لگتے ہیں 24 گھنٹے پور رہی دیوس اور رات, وہ سنائی دینے لگ جاتی ہے. کہتے یہ اکھنڈ کیرتن किसको कहते हैं फिर तारीफ की है। गुरबानी जरा खोज कर पढ़ने वाला सवाल है। राम नाम कीर्तन रतन वात हर साधु पास रखी जाए। रबे नाम का जो कीर्तन है उसकी पूंजी जो है कीमती जो है रतन है वो हरि ने साधु के पास रखी है। जो वचन सत वचन गुर सत सत्कर्मा किसी अनुभवी पुरुष के पास जाओगे वो आपको कौन सा उपाय देगा? याद अपराविद्या के साधन नहीं सिखलाता। वो कहते जहां ठीक है तुमने कर दिया काम, छोड़ो आप पिंड को छोड़ो इंदू के घाट के ऊपर आओ। वेयर द वर्ल्ड फिलॉसफी एंड देयर रिलीजन स्टार्ट, जहां दुनिया के फिलसफे खत्म हो जाते हैं वहां से परमार्थ सच्चे की अलभ्य शुरू होती है। एबीसी शुरू होती है, पिंड को छोड़ो चलो ऊपर, पहली अलभ्य यहां से शुरू, हिंदू का घाट छोड़ो चलो ऊपर, नाम के साथ लगो। इंद्रियां उलटने लगती हैं, जब इंद्रियां उल्ट गई सुट फैलाव से रह गई जिसम बेहिस हो गया जीते जी मरना सीख गया। एक और जगह गुरु अमरदास जी साफ करवाते हैं, सदगुरु मिलिए उल्टी बही भाई जीवत मरे ता बूझ पाए। सदगुरु के मिलने से उल्टने लगती हैं इंद्रियां, अंतर्मुख होने लगती हैं, इतनी अंतर्मुख हो जाती है कि जीते जी इंसान मरने का एहसास होने लगा, पिंड से रूह ऊपर आ जाती है, जिसम बेहस हो जाता है, जड़ और चेतन अलहदा हो जाता है। कहती जब जीवित मर जाए तब असलियत को बूझने वाला हो जाता है, हकीकत को जानने वाला हो जाता है। तो सदगुरु या संतों के मार्ग को उल्टा मार्ग करके भी बयान किया, उल्टा मारे समझे। तो फरमा रहे गुरु अमरदास जी साहब कि सतगुरु के मिलने से उनको अब तजुर्बा है, तजुर्बा की बिना पर बयान कर रहे हैं, उनको तजुर्बा है कहते हैं, फिर उसका क्या बयान हो कि कहना कछु न जाए, कहने का मजबूर नहीं, ये करके देखने का, कैसे इंद्रियां उल्टी है, कैसे जिस्म बेहिस हो जाता है कि आसन तो हमें मालूम नहीं होता, कि बैठ के करोगे तो शरीर रूप से इसी ताकत ऊपर आ जाएगी जिस्म बेहिस हो जाएगा, करके देखो सतगुरु तुमको कराएगा। सदगुर मिले ता अखी वेख है गुरबानी कहता है, करे अंदर सच पाए, अपनी आंखों से देखो, किसी की गवाही की जरूरत नहीं, पिंड से बेहस हो गई जिसम भूल जाएगा, अंतर ज्योति प्रगट होगी, आंख खुलेगी ज्योति प्रगट होगी, अपनी आंखों से देखने वाले होंगे, अंतर श्रुति सुनाई देगी, किसी की गवाही की नहीं जरूरत, तुम खुद कहोगे हाँ। कहते कहना कछु नहीं, कहने कहते का ये मजबूर नहीं, ये करने का भेद है, नहीं बुद्धि विचार कथनी छाड़ करनी करो तो कुछ पाओ साथ। तो गुरु अमरदास जी साहब को 70 साल के बाद ये दावत मिली है, कितना खोल खोल कर बयान कर रहे हैं कि दुनिया में भुलेखा न रहे, अब ये कोई समझ आई, अब ये करनी का मजबूत है। किसी आमिल पुरुष के पास बैठो, उसका नाम आप कुछ रखो जो आपको बिठाकर इसका तजुर्बा दे सके, जब आपको तजुर्बा मिलेगा आप चल पड़ो, है आपके अंतर्दान इसमें शक नहीं, थोड़े उभार की जरूरत है, जिया दान दे भक्ति लाए, थोड़ी तवज्जो का दान देना पड़ता, गुरमुख कोट उधार ना दे नामे एक कणी, गुरमुख करोड़ों जीवों का उधार करता है, नाम की थोड़ी थोड़ी तवज्जो दे, उसका कुछ बिगड़ता नहीं, समुन्द्र से अगर चिड़िया चोंच भर कर ले गई समुन्द्र का क्या घट जाता, मैं लोगों को परोपकार की खतर वो दौलत बख्शता है जो कहीं से भी नहीं मिल सकती सवाय अनुभवी पुरुष, और ऐसे अनुभवी पुरुष हमेशा ही कमयाब रहे, आज भी कमयाब है। अपराविद्या के महात्मा बतेरे मिलेंगे, समाज गुरु बड़े महात्मा मिलेंगे, वो भी मैं अर्ज करूंगा अगर सही प्रचार करे तो भी भाई भाइयों का प्यार हो जाए, ये पाकिस्तान न बनता, ये गलत प्रचारों का नतीजा है। आगे भी हम लोगों में जो कश मुकश है ये पेट प्रचार ने सत्यानाश कर रखा है, हर एक समाज किसी अनुभवी पुरुष का काम था प्रचार करना, अब एक ने 10-20 नौकर रख लिया साधु जाओ भाई, वो पेट की खातर जानते हैं झूठ है सच सच करके बयान करते, लोग इसी खातर ग्रेन मिल नहीं रहा, दाना मिल नहीं रहा, अब बताओ चाप या तिनकों को क्या करे, भूसे को क्या करे, लोग मजहब के नाम से मुतनफर हो रहे हैं। इसी अगर सदगुरु मिल जाए बैठ के अनुभव करे जिसम ऊपर आ जाए अपनी आंखों से देखे फिर वो कब कहेगा कि अंतर कुछ नहीं, जब आंखों से देख लिया तो फिर किसी की गवाही की क्या जरूरत है।
अणत नानक सतगुर को मिल दो मरे। गुर के शब्द फिर जीव को
अब गुरु अमरदास साहब फरमाते हैं कि सतगुर को मिलने से सतगुर को मिल दो मरे, मिल दो मरे चिन्नी जवान है, मिल दो मरा। सदगुरु के मिलने से जी मरना सीख जाता। फिर अंतर गुरु के शब्द के साथ लगने से नाम ये शब्द है कि मानो में बढ़ता है। शब्द वो ताकत है, उत्पत परला है शब्द होवा, शब्द ही फिर उत्पत हो। जिस ताकत के आधार पर ये शब्द हो रहा है, उत्पत्ति और परले हो रही है, दोबारा सृष्टि का आगाज जिस ताकत के आधार पर, उसको शब्द का शब्द अक्षर नहीं, शब्द वो पावर है। तो कहते हैं गुरु द्वारे ये शब्द मिलता है, इसके मिलने से पिंड से पहले मरता है जिसमें से ऊपर आता है, फिर वो हकीकत को पा जाता है गुरु के शब्द, फिर जीवे को, फिर हमेशा के जीवन को पा जाता है। गुरुवारी और जगह किया है, शब्द मरे हम शब्द मार दे वाले भाई, शब्द के साथ लगने से हमारी बाहरी जिस्म से रूह ऊपर आ गई और ऐसे मरे के कि नई जिंदगी को पा गए। नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन हो, समझे। अगर ऐसी मरनी इंसान सीख जाए हमेशा के जीवन को पा जाए जहां फिर मौत नहीं। ये क्राइस्ट ने कहा, अगर तुम बाहरी जिंदगी को पकड़े बैठे हो हमेशा की जिंदगी से खाली रह जाओ। जब तक बाहरी जिंदगी जिस्म जिस्मानी से तुम ऊपर नहीं आते उस जिंदगी को तुम पा नहीं सकते। बात तो बड़ी साफ है। यही मुसलमान फकीर कहते हैं मावतू केवल अंत मावतू, मरो पेशतर के तुम मरो। कभी साहब यही कह रहे हैं दिन में सौ सौ बार, कहते हैं एक बार नहीं जब चाहो फिर से ऊपर आओ। तो ये एक प्रैक्टिकल साइंस है सेल्फ एनालिसिस की, आत्मा को पिंड से ऊपर लाने की, जो पुरातन से पुरातन है और सनातन से सनातन है, मगर हम भूलते रहे, महात्मा आकर उसको ताजा करते रहे, हम फिर भूलते रहे, फिर कोई और महात्मा ताजा करते रहे। जैसे और साइंस है, ये भी एक बड़ी प्रैक्टिकेबल साइंस है, मगर किसी आमिल की मौत आज है जो आमिल पुरुष हो, आमिल पुरुष कमयाब। पराविद्या ये है, आत्मविद्या या पराविद्या, आत्म तत्व तत्व का होना मिलना बड़ा जरूरी है। जिसको आत्म तत्व का बोध हो चुका है वो बिठाकर आपको भी आत्म तत्व का बोध करा सकेगा। राजा जनक को उपदेश दिया अष्टावगर ने, फिर पूछा क्यों राजन ज्ञान हो गया, कहते हाँ महाराज हो गया। लेने वाला गवाही दे कि हाँ महाराज कुछ मिल गया मुझे, अंतर ज्योति अब नजर आने लग गई। फिर रोज आप आयास करे और बढ़े, जिसके अंतर इस ज्योति का विकास हो गया, पूर्ण ज्योत जगे कट में तब खालिस्ता है, खालिस जाने उसका नाम है खालसा। बताओ एक खालसा मिले हम पाव दोनों को तैयार है, कई मिले क्या कहना। जिन्हें खुदा के नूर को कोई तूर पर चढ़कर देखे ये कोई तूर है वो मुसलमान। यही ईसाई की तारीफ की है, यही हिन्दू महात्माओं ने अंतर परमात्मा की ज्योति के प्रकट करने के दर्शन करने की तारीफ गई। सबका दर्शन समाज अलहदा अलहदा वो हमने बनाई खास काम के लिए, जरूर थी और अब भी है, ताकि इंसान करप्शन में न जाए, सदाचारी बने, नेक पाक बने। उसके लिए खास खास कवानीन बनाए गए कि दुनिया बनाए कि दुनिया की यात्रा सफल हो। बात इतनी, अब हमने उस चीज को पाना है जो जबान के बगैर चल रही है। जहां बोलता अक्षर आवा, जहां बोलता मन नहीं रहा, बोल अबोल मन है सोई जस है तसलते लतेने को। ये हमारा आदर्श है, इसको पाना। गुरु अमरदास जी साहब को वृद्धावस्था में इस चीज की सूझित हुई, गुरु अंगद साहब के चरणों में आकर उन्होंने एक जगह फरमाया है हम नीचे उत्तम है भाई, कि हम कभी इंद्रियों के घाट पर थे आप ऊपर आए, इकरार कर रहे हैं। कब से कहते जब से गुरुमत बुद्ध पाई, गुरु की मति को धारण किया। तो जो उसका छोट पिंड को छोड़कर ऊपर आने लग जाए, बाहर की आलाशें खुद खुद कम हो जाएंगी, दुनिया की देखने वाली आंख बदल जाएगी, मौत जब आएगी वो काम तो उसने अपने हाथों आगे ही किया हुआ, गुरु खावे जाए निशन, मौत का खौफ क्या रहेगा। और ये प्रार्थन से प्रार्थना, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल सत्यवान सावित्री का मैं याद कर दूं, उसके जीवन में यह आता है जो उसके पति के मरने का दिन एक ज्योतिषी ने कहा कि फलाने दिन रक्त से गिरकर मरेगा। जब वो दिन आ गया उस दिन वो अपने पति के साथ जंगल में चली गई। वहां जब वो वक्त पहुंचा तो दरख्त से पति गिरा, सख्त चोट आई, बेहाल हो गया। उसकी सिर को अपनी गोद में रख लिया और इंतजार करने लगी मौत की। लिखा है कि यमराज आए उसकी रूह लेकर चल पड़े। पीछे कुछ और भी लिखा, उसकी तरफ हमने कभी ज्यादा तवज्जो नहीं दी कि जब यमराज उसकी रूह को लेकर चल पड़े तो सत्यवान सावित्री भी जिस्म को छोड़कर पीछे चल पड़ी। क्या ये मुमकिन है भाई? हाँ भाई, डेफिनेटली जरूर, बाकायदा साइंस है। मगर आज इसके आमिलों की कमी के सबब से हम इसको भूल रहे हैं। जब कोई भी अनुभवी पुष्ट मिलेगा, इसलिए कहा क्या ना कछु न जाए, कहने का मजबूर नहीं करके देखने वाला मजबूर, वो आपको पिंड से आने का तजुर्बा कराएगा। खैचे शुद्ध गुरु बलवान समर्थ पुष्ट तुम्हारी शुद्ध के ऊपर लाने का तजुर्बा कराएगा, अंतर की आंख खोलेगा, अंतर की श्रुति सुनाएगा। इसके पाने से फिर मन खड़ा हो जाता है। जब बच्चे को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दो, वो क्या करेगा? वैसे पहले दरवाजे तोड़ेगा, चीखेगा, पुकारेगा। जब बच्चे को अंतर एक खेलने का बड़ा अच्छा सामान मिल जाए, चुप कर रहेगा। अंतर ज्योति प्रकट हो गई, अंतर खंडो ब्रह्मंडो पर रू सफर करने लग गई, अंतर में श्रुति जारी हो गई। अब उसमें महारस है, उसको पाकर दुनिया की तरफ वो मन क्यों आएगा? आ नहीं सकता। जब वो रस आवाए रस नहीं बाप
ममता की मल उतरे यह मन
कहते हैं अगर जीते जी तुम मरोगे, इन्हों के घाट से ऊपर आओगे, जिस्म का मोह जाता रहा, ये मिट्टी का ढेर बन जाएगा, तो मैं मेरी कहां रहेगी, ममता कहां रह जाएगी। जबानी कहने से मोह नहीं टूटेगा, जब पिंड से सचमुच रूह ऊपर आए ये मिट्टी का ढेर हो जाएगा तो अटैचमेंट जाती रहेगी, कुदरती अंतर रस आने लगा, बाहर आने चित नहीं करेगा। कहते ममता की मल इस तरह से उतरेगी और मन अच्छा हो जाएगा। ये तरीका है मन के साफ करने का, आलाइशों से पाक करने का, प्रभु के साथ जुड़ने का। एक मुसलमान फकीर ने इसीलिए कहा, घर तो दारी दर दिले खुद अजम रफ्तन सुए दोस्त, यक कदम बर नफ्स से खुद ने दीगरे दर हुए दोस्त। अगर तू दिल में उस मालिक के मिलने का पक्का इरादा रखता तो एक कदम अपने नफ्स पर रख, मन पर रख, इसको काबू कर, और दूसरा जो कदम तू लेगा वो मालिक की गली में पहुंच जाएगा। मन का मन जीते जग जी, मन समुद्र लखना पड़े उठे लहर अपार। ये मन रूपी समुद्र है, इसमें अपार लहरें उठ रहे हैं। दिल दरिया समरथ बिना काम लगावे पार, कोई ये समरथ कोशियों से गुजरा हो वही हमको इसे पार करे तो करे, नहीं तो कैसे हो सके। इस मन के हाथों सब रो रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा रोते चले गए, अरे भाई हमारी क्या हैसियत है। मन समर्थ गुरु अगर मिल जाए, छोटी मार्ग मिल जाए, उसकी कमाई करने वाला ये हो जाए, पिंड से रू ऊपर आने लग जाए, नाम को महाराज को पा जाए, फिर मन खड़ा हो जाता, फिर मन ढूंढने से नहीं मिलेगा। कहते ये तरीका जिससे मन काबू होता है, ये कब फरमाया? जब गुरु अंगद साहब के चरणों में आकर इसकी समझ आई कि नाम चाहिए। तो ये संतों का उपदेश किनको है? महापुरुष साखी बोल दे साजी सगल जहान। महापुरुष लोग शिक्षा देते हैं सारे जहान को एक जैसे, सब जहान को एक जैसे। यहां समाज और कौम मजमू का सवाल नहीं है। आप अपनी अपनी समाज में रहो, अपने अपने बोले रखो, आत्मा को मन इंद्र से ऊपर लाओ, ये परा विद्या है, इसको हासिल कर लो। अपने आप को जानो और प्रभु को पहचानो, इसके बगैर जन्म मर नहीं खत्म हो, हमेशा का सुख नहीं मिल सकेगा।
तो ये शब्द था गुरु अमरदास जी साहब का जो आपके सामने रखा गया, पहले कबीर साहब का शब्द था फिर ये है। यही और महात्माओं ने कई जगह खोल खोल कर बयान किया है। गुरु नानक साहब ने एक जगह बड़ी खूबसूरती से फरमाया है, ए तन माया पाया प्यारे लीतड़ा लब रंगा है, ए तन माया में पड़ा है। माया कहते हैं भूल का नाम है, मैं जिस्म हूं बना हुआ हूं, हूं असल में इसके चलाने वाला। तो जब हम अपने आप को भूल जाते हैं जिस्म का रूप बन गए, यही माया, माया के साथ से रहता है चुन ममता बन जाती, मोह बन जाता, मोह माया सब जग सोया है भ्रम कहो गिर जाए। ये भ्रम कैसे मिल सकता है, सारा जहां इसी में सो रहा है, पढ़े लिखे अनपढ़ अमीर गरीब हाकम महकूम सब एक ही दृष्टि में बंधे हुए हैं। इसका उपाय बतलाया, मोह माया सो रहे अभागे गुरु प्रसाद को वेला जागे। गुरु कृपा से कोई बिरला बिरला इंसान जाग सकता, नहीं तो सब एक ही दृष्टि में जा रहे। तो क्या फरमाया, ए तन माया पाया प्यारे लीतड़ा लब रंगा, आगे लब लालच भोगो रसों के लब लालच में इसको रंग दिया। फिर मेरे कंत न भावा चोलड़ा प्यारे किमन से ले जा रहा है, कि मेरे पति को ऐसा चोला पसंद नहीं है भाई, ऐसी रू रूपी स्त्री कैसे माले की गोद में जा सकती है, सेज पर जा सकती है। कबीर साहब ने एक जगह फरमाया है, गुरु के पास वो रंगरेज है, गुरु मेरा रंगरेज, मेरी रंग मेरी चुनरिया को वो रंग देता, पहले साफ करता फिर रंग दे देता नाम का, मजीठे का रंग जो कभी उतरने वाला नहीं, ऐसा रंग है जो अरंग है जिस पर कोई और रंग नहीं चढ़ सकता। ये बख्शिश कहो समृद्धा कहो किसको, कि किसी सदगुरु को, उसका नाम आप कुछ रखना। आज गुरुडम जो बदनाम हो रही है उसका कारण क्या है, कि जो लोग समर्थ पुरुष नहीं है ये कुछ नहीं दे सकते, वो एक्टिंग पोजिंग से काम दे रहे हैं, सांग बन रहे हैं। अब उनके पास एक चीज है नहीं, वो क्या करें, तुम अभी काबिल नहीं भाई, चलो करो होगा मरने के बाद मिलेगा, अभी क्या भाई, अभी तो कल की बात है, अब क्या करोगे। जो समर्थ सब बैठ कर आपको थोड़ा तजुर्बा करा दिया, रुपये में दो चार पैसे भी कराए, बाकी तुम बढ़ा लो अभ्यास से उनकी, फिर तवज्जो ले लेकर तो बात हो। तो संतों का अपने सारी मनुष्य जाति सारी समाजों को एक जैसा, यहां पर आप देखेंगे हमें कोई मंदिर नहीं बनाया, कोई समाज के चेन चक्र नहीं रखा, कोई पूजा पाठ का वतीरा नहीं रखा, क्यों भाई, आप अपनी आप अपनी अपनी समाज में रहो, अपने अपने बोले रखो। ये जो मजमून है ना, नेक पाक बनना सदाचारी बनना मन की मल का उतारना नाम का जपना, ये सब मनुष्य जाति सब समाजों के लिए एक जैसा। हमारे हजूर ने जब चोला छोड़ने पर आए तो फरमाने लगे, भाई एक ऐसी कॉमन ग्राउंड बनाओ जहां पर सब समाजों के भाई इकट्ठे बैठ सके, अपने अपने बोले रखें, अपनी अपनी समाजों में रखें, जो काम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नाम का जपना, उसका स्कूल बना लें, स्कूल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दोनों की बरकत से सब भाइयों को फैज मिल रहा है। जो थोड़ी बहुत ही समझ उन महापुरुषों के चरणों में बैठ कर आई है उसे दुनिया को फैज मिल रहा है। इस बात की हर एक हृदय में तलाश है, मगर ये चीज मिल बहुत कम रही है, कहीं कहीं मिल सकती, आम नहीं मिल रही, मनुष्य जीवन भागों से मिला है, इसी में ये हम काम कर सकते हैं। जिसने मनुष्य जीवन पाकर अनुभवी पुरुषों के चरणों में आकर इस काम को कर लिया वो उसका जीवन सफल हो गया। जिसके ऐसे महापुरुष मिल गए हैं उनको चाहिए इस काम को पूरा करें, जिनको नहीं मिले वो इस तलाश में रहे, आखिर इसके बगैर काम नहीं बनेगा। तो ये उपदेश था संतों का जो आपके सामने रख रहे हैं।
धर्म जप भगति बहु अभिमान रात लो हम से बिगड़ी प्रभजी रात लो हम से बिगड़ी हमारे ज्ञान ਖਾ ਲੋ ਜਮ ਦੀ ਖਬਰੀ।